یہاں موجود سارے ساتھیوں کو میرا انقلابی سلام. دوستو ہم لوگ ایک ایسے سمے میں اس وشے پر چرچا کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں جب پورے دیش میں پچھلے 25 سالوں میں اگر سرکاری آنکڑوں کی بات کریں تو اینٹی دلت ایٹروسٹیز جو ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ طریقے سے بڑھی ہے. ابھی کچھ سمے پہلے ہی سنپیڑ میں ایک دلت پریوار کے بچوں کو جلا کر مار دیا گیا. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے, جبکہ راجستھان میں 2 دلت مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. اسی طریقے کی گھٹنائیں لگاتار گھٹ رہی ہیں. بھگانا کانڈ ابھی بھی ہماری یاد میں تازہ ہے. کچھ دلتوں کو ٹریکٹر سے کچل کر مار دیا ان کے جو وہاں پر لینڈ اونر تھا اس سے, وہ گھٹنا بھی ابھی زیادہ پرانی نہیں ہے. تو ایک اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پرگتی کے دعووں کے باوجود یہ جو رائٹ ونگ بریگیڈ ہے جو ساماجک سمرستا کی بات کرتی ہے, اس ساماجک سمرستا کے دعووں کے باوجود دلتوں کے خلاف لگاتار ایٹروسٹی بڑھی ہے. اور یہ خاص طور پر ٹرینڈ اگر ہم دیکھیں تو 1991 میں نئی آرتھک نیتیوں کے لاگو ہونے کے بعد گاؤں اور شہروں میں جو ایک نو دھناج ورگ پیدا ہوا ہے, نیا دھنک طبقہ پیدا ہوا ہے, اور مدھیہ جاتیوں کے بیچ سے جو ایک دھنی کسانوں رچ فارمرز کا اور کلرکس کا طبقہ پیدا ہوا ہے, جو ورناشرم کی ویوستھا کے مطابق بے شک وہ شودر جاتیوں میں آتے ہیں, لیکن اس سمے جو کھیتیہر دلت مزدور ہیں ان کے دمن اتپیڑن میں اگر کوئی سب سے آگے ہے تو یہ کلرکس رچ فارمر جاتیاں ہیں. چاہے وہ بہار کی بات ہو, ہریانہ کی بات ہو, پشچمی اتر پردیش کی بات ہو, یا پھر آندھرا اور تمل ناڈو کی بات ہو, یہ ساری ایٹروسٹیز کے ساتھ جو دوسری ایک سچویشن جو آج کے سمے میں کاسٹ کوشچن کے کانٹیکسٹ میں کیریکٹرسٹک فیچر ایک ہے, وہ ہے رائٹ ونگ کا اپسرج. جو رائٹ ونگ کا اپسرج صرف مودی کے ابھار کے سمے سے ٹریس نہیں کیا جانا چاہیے. اگر کسی لانگے ڈیوری اینالیسس کی بات کریں, ایک لمبے دور کے وشلیشن کی بات کریں, تو یہ آڈوانی کی رتھ یاترا سے ہی شروع ہو گیا تھا. اس کا دوسرا بڑا پڑاؤ تھا واجپئی سرکار کا بننا 1998 میں, اور اس کا تیسرا بڑا پڑاؤ تھا گجرات کے دنگے, اور اس کا چوتھا بڑا پڑاؤ تھا مودی کا پاور تک پہنچنا, اور اس کے پہلے جو تمام بےہودہ قسم کی فاسسٹ مہمیں چل رہی تھی, چاہے وہ لو جہاد ہو یا گھر واپسی ہو, جس فاسسٹ کیٹی بورجوا رومانٹک افسرج کے لہر پہ سوار ہو کر مودی سطح میں پہنچا, اور اس کے بعد اب پاور میں آنے کے بعد جس طریقے سے امبیڈکر کے پورے سمبل کا ایک رائٹ ونگ اپروپریشن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس برہمنوادی ہندو ویوستھا کے ہی ایک انگ کے طور پہ ان کو سہیوجت کرنے کی, ان کو کوآپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امبیڈکر کے پورے کاسٹ کے اینیلیشن کے پروگرام سے کوئی ایگری کر سکتا ہے یا ڈس ایگری کر سکتا ہے, لیکن جو بھی جاتی انمولن کے لیے کام کرنے والی ریڈیکل فورسز ہیں, میں یہاں رام داس آٹھولے یا تھرو ماولون یا مایاوتی کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو بھی ریڈیکل ریولیوشنری فورسز ہیں جو کہ جاتی انمولن کے لیے کام کر رہی ہیں, اپنے پروگرام میں تمام ڈفرینسز ہونے کے باوجود یہ سبھی مانیں گے کہ امبیڈکر کا یہ رائٹ ونگ اپروپریشن نہایت ہی بےہودہ قسم کا ہے. یہ فیکٹس کے ساتھ الٹ پھیر کر کے امبیڈکر کی کچھ باتوں کو کنٹیکسٹ سے کاٹ کر اور ان کو ایک ہندو سولائزیشن کا ایک ہندو سولائزیشن کے ایمبٹ سے بھیتر ایک ان کو ریفارمر کے طور پہ پیش کرنا محض, اور ان کو محض ایک کہا جائے کہ سمپل ہندو سوشل ریفارمر ریلیجیس ریفارمر میں تبدیل کرنے کی کوششیں جو جاری ہیں, اس سے کوئی بھی ریولیوشنری اینٹی کاسٹ موومنٹ, کوئی بھی ملٹنٹ اینٹی کاسٹ موومنٹ, چاہے وہ لیفٹ وچار دھارا سے آتا ہو یا وہ امبیڈکر کی وچار دھارا سے آتا ہو, وہ اس سے سہمت نہیں. نشچت طور پہ اس پریاس کا بھی ودروہ کیا جانا چاہیے. جو کاسٹ کے ایلیویشن کا پرشن ہے, ہمیں لگتا ہے کہ وہ ان اس پورے کانٹیکسٹ کی وجہ سے آج ایک رینیوڈ रेलेवेंस के सामने हमारे साथ सामने उपस्थित है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि फैशिस्ट अपसर्ज के इस दौर में कास्ट के एनिहिलेशन का क्वेश्चन पहले हमेशा से ज्यादा पर्टिनेंट तौर पे, प्रासंगिक तौर पे हमारे सामने मौजूद है। और कास्ट के एनिहिलेशन के किसी भी हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट की, किसी ऐतिहासिक परियोजना की अगर बातचीत की जाएगी तो निश्चित तौर पर इट विल हैव टू कम टू टर्म्स विद द लेगेसी ऑफ अम्बेडकर। और उसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्रिटिक का मतलब कोई एनिमोसिटी वाला या कोई एंटागोनिस्टिक वो नहीं होता, क्रिटिक का मतलब निगेशन के थ्रू डेवलपमेंट होता है, जो कि अम्बेडकर भी मानते थे और अपने टीचर जॉन ड्यूई से उन्होंने सिद्धांत को लिया था कि कोई भी नॉलेज, और इस मामले में जॉन ड्यूई हेगेल से प्रेरित थे, कि कोई भी थियरी, कोई भी इवेंट, कोई भी मूवमेंट, कोई भी चीज वो अपने निगेशन के थ्रू ही डेवलप करती है। और निगेशन का मतलब होता है सबलेट करता है, कोई भी नया स्टेज पुराने स्टेज से कम्प्लीटली डिफरेंट या कम्प्लीटली नॉवल नहीं होता है, उसमें पुराने दौर के कॉन्टिन्यूटीज के कुछ एलिमेंट होते हैं और कुछ नए का तत्व होता है, कुछ चेंज का एलिमेंट होता है। और इसलिए आज अम्बेडकर की पूरी लेगेसी को बहुत ही करीबी के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ और पक्षधरता के साथ भी इवेलुएट करने की जरूरत है। और इस तौर पे जब इस विषय पर एक सिंपोजियम रखने की योजना रखी गई तो हम लोगों ने पुरजोर तौर पे इसका समर्थन किया। और ऐसा नहीं कि ऐसा करने वाले हम लोग अकेले लोग हैं, पूरे देश में लोग इस सवाल पर सोच रहे हैं, पूरे देश में जो लोग सरोकार के साथ, पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ, एंटी कास्ट मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं वो इस सवाल पे सोच रहे हैं। और इसलिए अम्बेडकर का प्रश्न एक केंद्रीय महत्व रखता है। अम्बेडकर के पॉलिटिकल लेगेसी का कोई क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना, इसमें हम कोई नॉवेल्टी नहीं क्लेम कर सकते। आज हम अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा करने वाले हम पहले लोग नहीं। और इससे पहले भी तमाम सीरियस एकेडमिशियंस ने, रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट ने अम्बेडकर के लेगेसी का, अम्बेडकर के पॉलिटिकल फिलॉसफी, उनके पॉलिटिकल प्रैक्टिस का एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने की कोशिश की है। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इन सारी क्रिटिक्स में एक प्रॉब्लम है जो कॉमन है। ज्यादातर जो क्रिटिसिज्म अम्बेडकर के पॉलिटिकल थॉट और उनके पॉलिटिकल प्रैक्टिस का हुआ है वो प्रैक्टिकली अम्बेडकर ने कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लागू की कास्ट के एनिहिलेशन के लिए, 1919 में साउथ बोरो कमीशन के सामने टेस्टिमनी से लेकर 1956 में 1956 में बुद्धिज्म में कन्वर्जन तक जो करीबन 37 इयर्स का पॉलिटिकल कैरियर था। और अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पेश कास्ट क्वेश्चन के उनके रिसर्च पेपर की शुरुआत मानी जाए तो 1916 से लेकर 1956 तक 4 डेकेड्स का एक एकेडमिक और अपने अपने एकेडमिक कैरियर कोई चीज नहीं होती, वो बेसिकली पॉलिटिकल उसका एक एस्पेक्ट होता है। तो अम्बेडकर के पूरे पॉलिटिकल जर्नी का जो इवैल्यूएशन अभी तक किया गया है वो इस तौर पे किया गया है कि अम्बेडकर 1919 में क्या कह रहे थे, 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के सामने क्या प्रपोजल रखा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की तरफ से, 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जब सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात हुई तब अम्बेडकर ने क्या पोजिशन रखी, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते वक्त अम्बेडकर का क्या पॉलिटिकल पोजीशन थी, और उसके बाद 1941 में वॉर काउंसिल में भागीदारी और 1942 में वॉयसराय की काउंसिल में मेंबर ऑफ लेबर के तौर पे हिस्सेदारी, और उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के तौर पे 1945-46 के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना, और उसके बाद कांग्रेस के साथ उनकी करीबी होना 1947 से इंडिपेंडेंस के ठीक पहले, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनना, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनना, माइनॉरिटी कमेटी को हेड करना, ये सारी चीजों के दौरान जो अम्बेडकर की पॉलिटिकल पोजीशन थी वो निश्चित तौर पे कंसिस्टेंट थी। और ज्यादातर जो एकेडमिक पॉलिटिकल क्रिटिक्स हुए हैं वो इस चीज से हुआ है कि अम्बेडकर कंसिस्टेंट नहीं थे, 1919 में वो कह रहे थे कि हमें रिजर्व सीट दो या सेपरेट इलेक्टोरेट दो, 1928 में उन्होंने कहा नहीं हमें रिजर्व सीट नहीं हमें सेपरेट इलेक्टोरेट ही चाहिए, 1932 में सेपरेट इलेक्टोरेट मिला लेकिन उसके बाद गांधी के पास के बाद जो पूना पैक्ट हुआ तो अम्बेडकर ने उसमें एक तरीके से एक किस्म से वो पॉलिटिकल सरेंडर ही था, और उस पॉलिटिकल सरेंडर के बाद आईएलपी बनाया। तो वो कहते हैं कि कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, और अम्बेडकर के ज्यादातर एकेडमिक क्रिटिक्स और जो रेवोल्यूशनरी लेफ्ट की तरफ से, अभी मैं लेफ्ट में सीपीआई सीपीएम या सीपीआई या एमएल लिबरेशन को जोड़ के नहीं चल रहा हूँ, मैं रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। 1951 तक सीपीआई का जो पूरा धारा था, सीपीआई की जो पूरी कब मूवमेंट था, और 1967 से जो नक्सलवादी मूवमेंट से एमएल मूवमेंट खड़ा हुआ, उसका जो पूरा स्ट्रीम था, जो एक टेंडेंसी था, मैं रेवोल्यूशनरी लेफ्ट उसको बोल रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं रेवोल्यूशनरी लेफ्ट में सीपीआई सीपीएम को शामिल करके बात नहीं कर रहा हूँ। जो क्रिटिक रेवोल्यूशनरी लेफ्ट की तरफ से आया और बहुत सारे एकेडमिशियंस ने भी किया, वो क्रिटिक इस बात से कुल मिला के रिड्यूस किया जा सकता है उस क्रिटिक को, मोटा मोटी नुआंसेस में डिफरेंसेस है, लेकिन उन नुआंसेस को छोड़ दिया जाए तो उन सारे क्रिटिसिज्म को इस बात पर रिड्यूस कर सकते हैं कि अम्बेडकर कंसिस्टेंट नहीं थे। ज्यादातर क्रिटिक्स आप शुरू से लेकर मतलब अम्बेडकर के दौर से, अम्बेडकर जब जीवित थे तब से लेकर और आज के दौर तक, अभी राइट टू द प्रेजेंट डे, ज्यादातर जो क्रिटिक्स हुए हैं वो इसी बात पर रिड्यूस किए जा सकते हैं। लेकिन आयोनिक बात यह है कि अम्बेडकर ने इस क्रिटिसिज्म का जवाब अपने जीवन में ही दे दिया। उन्होंने एक बार कहा था कि कंसिस्टेंसी गधे की खासियत होती है, केवल गधे कंसिस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंसी इज द वर्च्यू ऑफ एन एस। तो अम्बेडकर का यह क्रिटिसिज्म का जवाब तो अम्बेडकर पहले ही दे चुके हैं, और इस बेसिस पे कि अम्बेडकर की पोलिटिकल प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप उसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि प्रैग्मेटिक फिलोसफी का बेसिक प्रेजुडिस ही यही है। फिलोसॉफिकल उसका नोशन, प्री कंसीव्ड नोशन या प्रेजुडिस को मैं इस समय मैं पूर्वाग्रह के सेंस में नहीं कह रहा हूँ, फिलोसॉफिकल सेंस में कह रहा हूँ, जो उसका फिलोसॉफिकल प्रेजुडिस ही यही है कि किसी किस्म की कंसिस्टेंसी पॉलिटिकल प्रैक्टिस में नहीं होनी चाहिए, और वो इमीडिएटली जो भी इफेक्टिव हो, जो रास्ता इमीडिएटली जो भी कारगर दिखे, उसको लागू किया जाना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये प्रैग्मेटिज्म का बेसिक प्रेजुडिस है। मैं थोड़ा सा डिटूर करते हुए यहाँ रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट की भी थोड़ी बात करना चाहूंगा। रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट का भी कास्ट के साथ एक, कास्ट क्वेश्चन के साथ एक बहुत प्रॉब्लमेटिक रिलेशन रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी लेफ्ट ने दलित के लिए कोई स्ट्रगल नहीं किया, या दलित के लैंड के इशू को, या उनके आइडेंटिटी या उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को इशू को नहीं उठाया, उन्होंने या तो इतिहास पढ़ा नहीं है, या फिर वो इतिहास के साथ जानबूझ के एक डिस्टॉर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट ने कभी कास्ट क्वेश्चन को उठाया नहीं, एम्पिरिकली उन्होंने कास्ट बेस्ड ऑपरेशन का विरोध किया, एम्पिरिकली आनुभविक तौर पर, सिम्टोमेटिक आप कह सकते हैं कि सिम्टम के तौर पे जो दिख रहा था उस सिम्टम के खिलाफ लड़े। आंध्र महासभा का एक्सपेरिमेंट, किसान महासभा का एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि टाइटल हटाओ मूवमेंट चला और सफलतापूर्वक, वो बेसिकली दलित लैंडलेस लेबर का मूवमेंट था जो आंध्र में हुआ, वो कोई सवर्ण लोग नहीं चला रहे थे, और जो रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट के नेतृत्व में हुआ, उसके लीडरशिप में हुआ। या तेलंगाना का जो लैंड स्ट्रगल था, उस दौरान भी कास्ट ऑपरेशन के जो सिम्टम्स थे, जो उसका फेनोमिनल एस्पेक्ट था, जो जिस तौर पे वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था मटीरियली फेनोमिनली, उस तौर पे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से लड़ाइयां लड़ी। और यही कारण था कि बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक सीपीआई एमएल जब बनी चारू मजुमदार के नेतृत्व में, तो सीपीआई एमएल को शुरू से वहां के सवर्णों ने दुसाधुओं की पार्टी, मुसहरों की पार्टी, चमारों की पार्टी यही नाम दिया, और ये उस समय तक चलता था। और बिहार में अगर आप जाएंगे तो आज भी ये चलता है, जो एमएल मूवमेंट है उसको बेसिकली मुसहरों और चमारों का आंदोलन कहा जाता है। तो ये यूं ही नहीं हुआ, इसका कारण था कि लैंड का क्वेश्चन, जो कि कास्ट ऑपरेशन का आज भी सबसे एक कहा जाए कि मजबूत मटेरियल बेसिस, आज अगर आनंद तेलतुंबड़े या उनके हम पूरे एनालिसिस को देखें तो उन्होंने बहुत एक सटीक एनालिसिस किया है कि मैक्सिमम एंटी दलित एट्रोसिटीज के निशाने पे वर्किंग क्लास दलित होता है। आप पिछले 25 साल में जितनी एंटी दलित एट्रोसिटीज हुई उनका आप डेटा उठा के देखिए, भगाना कांड, गुहाना कांड, मिर्चपुर कांड, खैरलांगी और भी बहुत नाम लिए जा सकते हैं। इन सारे जो भयंकर एंटी दलित एट्रोसिटीज हुई उसके निशाने पे दलित आबादी का वो हिस्सा था जो या तो खेतिहर मजदूर था या शहरी गरीब था, और वही निशाने पे अक्सर रहता है। तो इस मटेरियल क्लास क्वेश्चन को जो दलित आबादी के सामने एक खड़ा है, उसको रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट ने उठाया और उसके लिए लड़ाई की, उसके लिए शहादतें दी। लेकिन एम्पिरिकली कास्ट के सवाल पर लड़ना और कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ लड़ना एक चीज है, और थ्योरेटिकली कास्ट क्वेश्चन को समझना और हिस्टोरिकली उसका एक सही एनालिसिस पेश करना, ये एक अलग सवाल है। और जहां तक थ्योरेटिकली कास्ट के पूरे हिस्ट्री को, उसके एवोल्यूशन को, उसके डेवलपमेंट को, और किस तरीके से कास्ट हायरार्की या कास्ट सिस्टम अपने जेनेसिस से लेकर आज तक, वो स्टैटिक तो नहीं रहा। वो स्टैटिक अगर रहता तो टेम्पोरली और स्पेशियली, यानी कि काल के हिसाब से और दिक के हिसाब से, उसमें वेरिएशन नहीं होते। और अगर आप देखें कि जिस रूप में कास्ट सिस्टम पैदा हुआ, अलग अलग समय पे जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम्स आए, उन एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम्स ने कास्ट की पूरी हायरार्की की आइडियोलॉजी को, उसकी जो कहा जाए कि प्यूरिटी पोल्यूशन की एक आइडियोलॉजी को, उसने अपने तरीके से कोऑप्ट किया, उसको मोल्ड और रिमोल्ड किया, उसको प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस किया। और इस प्रोसेस में कास्ट की पूरी आइडियोलॉजी भी, और पूरे देश में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पश्चिम भारत से लेकर पूर्वी भारत तक कास्ट के हायरार्की में आपको बहुत वेरिएशन मिले। फॉर एग्जाम्पल, साउथ इंडिया में जो इंटरमीडिएट दो वर्ण है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वैश्य और क्षत्रिय। वहां पर क्योंकि कास्ट सिस्टम परकुलेट तब करता है साउथ इंडिया में, जिस दौर में एग्रीकल्चर प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन बन चुका था, वैश्य ट्रेडिंग को, कॉमर्स को अपने प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन के तौर पर अपना चुके थे, और शूद्र जातियां मुख्य तौर पर प्रेजेंट कास्ट के तौर पर उभर चुकी थी। और वहां पर इसलिए ब्राह्मणों को इम्पोर्ट किया गया साउथ इंडिया में, जब कुछ शूद्र किंगडम्स पैदा हुए तो उनको इम्पोर्ट किया गया, ताकि उस डोमिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए, उसको लेजिटिमाइज करने के लिए, वो आइडियोलॉजी को उस हिसाब से मोल्ड और रिमोल्ड करें। और इसलिए जो अर्ली मिडिवल पीरियड है, अर्ली मिडिवल पीरियड में ये घटना घटित होती है, या आप कह सकते हैं लेट एंशियंट इंडिया में ये परिघटना घटित होती है कि साउथ इंडिया में सत शूद्र और असत शूद्र में फर्क किया जाता है, और जिसका एक बेसिस पुराने वैदिक टेक्स्ट में भी मौजूद है, जहाँ हीन और अहीन शूद्र की बात की गई है। जैसे चांडाल आउटकास्ट नहीं है, चांडाल अहीन शूद्र में आ गए, और वो शूद्र जातियों का बेसिकली पार्ट बनते हैं, जो हम लोग नहीं मानते। ऑब्वियसली हम यहाँ पे ब्राह्मणिकल वो जो आइडियोलॉजिकल एपरेटस है उसकी बात कर रहे हैं, कि उसने किस तरीके से उसको डिफाइन किया है, उसने उसको किस तरीके से आइडियोलॉजिकल एक बेसिस दिया। तो ये जो वेरिएशन है, आप इनको तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब आप ये समझे कि कास्ट सिस्टम भी कोई स्टैटिक फिनोमेनन नहीं है, जिसको वेदों ने और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ने, ब्राह्मण संहिताओं ने और पुराणों ने इंजेंडर किया है। द थिंग वाज जस्ट ऑपोजिट है। कास्ट सिस्टम ने वैदिक टेक्स्ट को, पुराणिक टेक्स्ट को और ब्राह्मण संहिताओं को रचने का एक मटीरियल मिलियू, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट पैदा किया, और उस सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये ब्राह्मणिकल टेक्स्ट रचे गए। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मणों ने पहले सोचा कि एक ऐसा सोशल फैब्रिक होना चाहिए, एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए, फिर सोच के उन्होंने वेद लिखे, पुराण लिखे, और फिर उस वेद और पुराण और उन टेक्स्ट ने एक ऐसी कास्ट सोसाइटी एंजेंडर की। ये आइडियलिज्म होगा। और आपको फिर ये मानना पड़ेगा कि अगर ब्राह्मणों ने कास्ट सिस्टम को पैदा किया तो ब्राह्मणों को किसने पैदा किया? तब तो ब्राह्मणों की बात माननी पड़ेगी कि ब्राह्मणों को ब्रह्मा ने पैदा किया। तो इसलिए आपको कास्ट सिस्टम के जेनेसिस को आइडियलिस्ट व्यू पॉइंट से आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते, उसको इंटरप्रेट कर सकते, उसको आपको पूरे सोसाइटी सोशल एवोल्यूशन का जो डायनेमिक है, जो उसका मटेरियल डायनेमिक है, जिसमें ऑब्वियसली सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं आते हैं, और जिन लोगों ने मार्क्सिज्म को सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स तक रिड्यूस करने की कोशिश की है, उन्होंने मार्क्सिज्म का कौन सा वर्जन पढ़ा या समझा मैं दावे से नहीं कह सकता, लेकिन ऑब्वियसली वो मार्क्सिज्म का वो वर्जन नहीं था जो कि मार्क्स, एंगल्स और उनके बाद लेनिन ने फॉर्मुलेट किया। और उनकी लड़ाई लगातार इकोनॉमिज्म के खिलाफ शुरू से लेकर अंत तक, जो रेवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म है, वो इकोनॉमिज्म से लड़ते हुए डेवलप हुआ। लेकिन ये डिटूर हो सकता है, अभी हम वापस रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट जो भारत का था उस पर वापस आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट ने कास्ट क्वेश्चन को थ्योरेटिकली हिस्टोरिकली नहीं समझा, लेकिन ये एक ब्रॉडर सेल्योर का एक पार्ट था। एक ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि 1925 में बनती है और 1951 तक, 26 ईयर तक, उसके पास इंडियन रेवोल्यूशन का कोई प्रोग्राम नहीं था, उसके पास इंडियन सोसाइटी के कैरेक्टराइजेशन का कोई स्टडी नहीं था, उसके पास एनिमी क्लासेस और फ्रेंड क्लासेस के एनालिसिस का कोई यार्डस्टिक नहीं था, और वो विदेशी पार्टियां जो थी कम्युनिस्ट पार्टियां थी, जर्मन पार्टी, सोवियत पार्टी, चाइनीज पार्टी, ब्रिटिश पार्टी इन पर्टिकुलर, क्योंकि आप लोग को मैं तो यहाँ का बाशिंदा नहीं हूँ, जो भी मुंबई के मूवमेंट से वाकिफ होगा उन्हें पता होगा कि मुंबई में ट्रेड यूनियन को शुरुआत करने के लिए सीपीजीवी एमएल ने दो कार्यकर्ताओं को अपने भेजा था, ब्रैडली और स्प्रैग, जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की, ब्रिटिशर्स बेसिकली जो ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए। तो जो पार्टी अपने देश के रियल कंडीशन ऑफ सोशल प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन का कोई मौलिक अध्ययन, कोई ओरिजिनल स्टडी 26 ईयर तक नहीं कर पाई और इंडियन रेवोल्यूशन का कोई स्ट्रेटजी और जनरल टैक्टिक्स नहीं निकाल पाई, उससे आप अलग से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो कास्ट क्वेश्चन को समझ जाती, या तो वो बाकी सारी चीजों को समझ गया होता रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट और सिर्फ कास्ट क्वेश्चन को नहीं समझा होता। तो आप ये कह सकते थे कि ये कास्ट प्रेजुडिस है, या आप स्पेक्यूलेट कर सकते थे कि ये कोई ब्रह्मनिकल प्रीकंसीव नोशन है रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट का, जिसकी वजह से रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट कास्ट क्वेश्चन को सही तरीके से थ्योराइज नहीं कर पाया। लेकिन ये कोई आइसोलेटेड फेल्योर नहीं था, ये रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट का ओवरऑल पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल फेल्योर था, जो कि हिंदुस्तान में आज तक रेवोल्यूशन की प्रॉब्लम्स को प्रस्तुत कर रहा है हमारे सामने। एक तरफ लेफ्ट एडवेंचरिज्म है, कठोर है, जिसको ये लगता है, जिसको जनता से ज्यादा हथियारों पर भरोसा है, जिसको ये लगता है कि चंद बहादुर लोग अगर हथियार उठाकर लड़ाई लड़ें और कुर्बानी करें तो इसको देख के जनता जाग उठेगी, या सिर्फ 1% ट्राइबल आबादी के वॉर ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए कोई इंडियन रेवोल्यूशन का नया रास्ता खुल सकता है। एक तरफ वो लेफ्ट एडवेंचरस फ्रेंड है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री लेफ्ट का डेविएशन है, जो पूरी तरीके से संसद विधानसभाओं के सुअरबाड़ों में लोट लगा रहा है और जिसमें झंडे के रंग को छोड़ दिया जाए तो ये फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन कांग्रेस बीजेपी का है और कौन सीपीआई सीपीएम का है, खासतौर पर तब जबकि आप नंदीग्राम और सिंगूर जैसे हत्याकांड देखते हो एक ऐसी रेजिम के तहत जिसके ऊपर अपने आप को कम्युनिस्ट कहने वाले लोग बैठे हैं। तो वास्तव में ये एक क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी पैदा हो जाती है कि क्या यही कम्युनिज्म और क्या यही मार्क्सिज्म। तो ये दो छोरों में, और ये प्रॉब्लम आज की पैदा हुई नहीं, ये प्रॉब्लम राइट सिंस द इंसेप्शन ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट 1920 से, जिसको हम मान सकते हैं शक्ति भक्त और इस तरह के लोग मुजफ्फर अली, ये लोग सोच रहे थे कि किस तरीके से एक कम्युनिस्ट पार्टी बिल्ड की जाए, जो कि प्रोसेस कल्मिनेट करती है 1925 में सीपीआई के बनने के साथ। तो रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट का फेल्योर एक ब्रॉड फेल्योर है, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल इवन फिलोसॉफिकल फेल्योर है, और कास्ट क्वेश्चन को न समझना उस फेल्योर का एक पार्ट है, ये हमें लगता है। और इसी वजह से अम्बेडकर के मूवमेंट के बरक्स उसके जक्सटेपोजिशन में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एक बैलेंस्ड क्रिटिकल रिस्पॉन्स नहीं दे पाया, और ये दिक्कत 1928-29 से स्टार्ट होती है, जब टेक्सटाइल वर्कर्स की स्ट्राइक की तैयारी शुरू हो रही थी और जब टेक्सटाइल वर्कर्स स्ट्राइक हुआ उस समय। मैं ये नहीं कहता कि अम्बेडकर की पोजीशन सही थी, क्योंकि अम्बेडकर अपनी पहल पे गए भी नहीं थे, वो ईडी ससून मिल का जो मालिक था फ्रेडरिक स्टोन उसके बुलाने पे आए थे वो कि आप दलित मजदूरों से बात कीजिए, वो अपने से नहीं गए थे उस मूवमेंट में। लेकिन जो भी अम्बेडकर का स्टैंड था उसकी अलग से क्रिटिक की जा सकती है, लेकिन उसके रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का जो एक क्रिटिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए था, एक सही क्रिटिकल रिस्पॉन्स होना चाहिए था, वो क्रिटिकल रिस्पॉन्स कर पाने में कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट असफल रहा, और इसकी वजह भी कास्ट क्वेश्चन के पूरे थियोराइजेशन में और उसकी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग में देखा जाना चाहिए, जो कि रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट के पास नहीं। और इसलिए रेवोल्यूशनरी मूवमेंट लेफ्ट मूवमेंट की फेल्योर अपने आप में सिर्फ कास्ट क्वेश्चन पे नहीं थी, वो जेंडर के क्वेश्चन पे थी, वो कास्ट के क्वेश्चन पे थी, आज के समय में कहें तो वो एनवायरमेंट के क्वेश्चन पे है, आज के समय में कहें तो ट्राइबल रेजिस्टेंस मूवमेंट को किस तरीके से एक ब्रॉडर रेवोल्यूशनरी वर्कर्स मूवमेंट का पार्ट बनाया जाए उस सवाल पे है, और इन तमाम सवालों पे। अब इसके बरक्स अगर अम्बेडकर के पूरे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए और जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज उन्होंने एलिवेशन ऑफ कास्ट के लिए अपनाई उनका कोई क्रिटिकल इवेल्युएशन करना हो तो हमें उस पुरानी गड़बड़ी से बचना चाहिए, ऐसा हम लोग को लगता है, जो पुरानी गड़बड़ी एकेडमिक क्रिटिक्स में भी मौजूद है और जो रेवोल्यूशनरी लेफ्ट के क्रिटिक्स में भी मौजूद है कि अम्बेडकर के पॉलिटिकल प्रैक्टिस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं। वो इनकंसिस्टेंसी इस कदर है कि उसको एक कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंसी कहा जा सकता है, और यही अम्बेडकर की पॉलिटिक्स की कंसिस्टेंसी है, और इसलिए अम्बेडकर के पूरे पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट को अगर समझना तो सिर्फ आप ये नहीं देख सकते कि उन्होंने 1919 में क्या कहा और उन्होंने 1928 में क्या कहा और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 30 में और 31 में उन्होंने क्या कहा या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा। ये आपको ये एक कम्प्लीटली एम्पिरिकल एनालिसिस है कि आप बस जो अपियरेंस है उस अपियरेंस को एनालाइज कर रहे हैं और अपियरेंस को भेज के आप एसेंस तक नहीं पहुंच रहे हैं। और अम्बेडकर के पॉलिटिक्स के एसेंस तक पहुंचना है तो हमें यह लगता है कि अम्बेडकर की पॉलिटिक्स का कोई भी क्रिटिकल इवेल्युएशन उनके फिलोसॉफिकल ओरिजिन से शुरू होना चाहिए। कोई भी पॉलिटिक्स होती है तो उसके पीछे एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी पॉलिटिक्स होती है तो उसके पीछे मेथड और अप्रोच का क्वेश्चन होता है कि आपका दुनिया को देखने का नजरिया क्या है, हाउ डू यू अप्रोच द रियलिटी एंड इट्स प्रॉब्लम्स एंड देन हाउ डू यू एनालाइज दोस प्रॉब्लम्स, उसका मेथड क्या है आपको एनालाइज करने का। और इसलिए अम्बेडकर के भी पूरे पॉलिटिक्स का एनालिसिस यहाँ से शुरू होना चाहिए कि अम्बेडकर का फिलोसॉफिकल पोजिशन क्या है, वो कहाँ फिलोसॉफिकल वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, वो कहाँ से आ रहे हैं अम्बेडकर फिलोसॉफिकली। और अगर इस चीज को एनालाइज करना है तो बजाय हमें अम्बेडकर के तमाम मौजूद क्रिटिसिज्म को पढ़ने के सबसे पहले अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए कि अम्बेडकर ने क्या लिखा है, उनका जो पूरा पॉलिटिकल राइटिंग है और उसको हम मुझे लगता है कि 1916 से जोड़ना चाहिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनके रिसर्च पेपर से बजाय 1919 से, और उस समय से लेकर आखिरी वक्त तक अम्बेडकर की जो पॉलिटिकल राइटिंग थी उसमें क्या मेथड अप्रोच और कौन सा फिलोसॉफिकल अप्रोच निकल के आ रहा है वह उसको पहले समझना चाहिए। और इस मामले में हमें लगता है कि इस बात को हमें अम्बेडकर के मुंह से ही सुनना चाहिए कि अम्बेडकर ने इस विषय में क्या कहा। अम्बेडकर ने जैसा कि उनके जो सबसे अच्छे बायोग्राफर थे धनंजय कीर, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है और अम्बेडकर की खुद की राइटिंग्स में भी ये बात बार बार अलग अलग समय पे आई है, जिसमें अम्बेडकर ने कहा कि आई ओव माई एंटायर इंटेलेक्चुअल लाइफ टू जॉन ड्यूई। जॉन ड्यूई के जो फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रीब्यूशन थे, उनका जो फिलोसॉफिकल स्कूल था, अम्बेडकर बेसिकली उसी से आते थे, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनके टीचर भी थे और उनके एक तरीके से फिलोसॉफिकल गाइड, फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर थे जॉन ड्यूई। और जॉन ड्यूई से काफी हद तक कहना गलत होगा, जॉन ड्यूई का इम्पैक्ट अम्बेडकर के पूरे पॉलिटिकल राइटिंग से क्लियर है। अगर आपने जॉन ड्यूई को पढ़ा है तो आपको लग सकता है कि अम्बेडकर की उस पॉलिटिकल राइटिंग के पीछे जॉन ड्यूई की शैडो लगातार मौजूद है और कहीं ना कहीं अम्बेडकर उसी इडियोलॉजी को, उसी फिलोसफी को अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में इंडिया की सिचुएशन के मुताबिक ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से ये शुरुआत होनी चाहिए। इसके बिना मुझे लगता है कि कोई भी एनालिसिस एम्पिरिसिस्ट होगी और कोई भी एम्पिरिसिस्ट एनालिसिस जिस तरीके से अजीबो गरीब नतीजों तक पहुंचती है, जैसा कि अम्बेडकर के बारे में पहुंची कि रेवोल्यूशनरी लेफ्ट मूवमेंट के कुछ लोगों ने उन्हें अंग्रेजों का दलाल बोला, उनको कॉम्प्रेडोर बोला, उनको एजेंट बोला, उनको अपॉर्चुनिस्ट बोला वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल गलत नतीजे हैं हमें लगता है। इस तरीके से आप एनालाइज करेंगे तो हर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ अजीबो गरीब नतीजे निकाले जा सकते हैं, हर पॉलिटिकल ट्रेंड के बारे में कुछ अजीबो गरीब नतीजे निकाले जा सकते हैं और इसलिए अम्बेडकर की एनालिसिस उनके फिलोसॉफिकल ओरिजिन से शुरू होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि ड्यूवियन फिलोसफी थी क्या और ड्यूवियन फिलोसफी के बेसिक टेनेट क्या, वो किस दौर में अमेरिका में पैदा हुई और किस तरीके से उसका एवोल्यूशन हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ। ड्यूवियन फिलोसफी जो अमेरिकन प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी का स्कूल था पूरा, उसका सबसे अहम माइलस्टोन, उसकी शुरुआत आप चार्ल्स पियर्स से देख सकते हैं जो कि एक आइडियलिस्ट प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफर थे। चार्ल्स पियर्स ने ही ये शब्द निकाला था प्रैग्मेटिज्म, जिसका मूल है प्रैग्मा, ये ग्रीक वर्ड है प्रैग्मा जिसका मतलब होता है एक्शन। प्रैग्मेटिज्म मतलब जो भी इमीडिएटली प्रैक्टिकली फ्रूटफुल हो वो किया जाना चाहिए और उसके टेनेट्स के आगे आएंगे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अम्बेडकर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी का जो पैदा होने और डेवलप होने का पूरा दौर था, वो दौर था 1860 से लेकर मोटा मोटी एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद भी उसमें कई डेवलपमेंट्स हुए। जॉन रॉल्स जो आज एक मेजर फिलोसफी ऑफ राइट का प्रोपाउंडर है, उसका भी एक मेजर इन्फ्लुएंस जॉन ड्यूई है और इस समय भी वो लोग उस पर लिख रहे हैं, उसमें फर्दर इजाफे हो रहे हैं प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी में। लेकिन जो उसका आप कह सकते हैं एक तरीके से हाई पीरियड हेड है वो 1860 से लेकर 1940 तक, और इस दौर में प्रैग्मेटिक फिलोसफी के जो मेजर डेवलपमेंट हुए वो इन 80 ईयर्स में है। और ये पूरे अमेरिकन सिविलाइजेशन या कहा जाए कि अमेरिकन फिलोसफी के डेवलपमेंट का एक आप कह सकते हैं थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज था जो कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस के समय टॉम पेन की जो पूरी फिलोसफी थी, जो एनलाइटेनमेंट और एनलाइटेनमेंट रीजन, एज ऑफ एनलाइटेनमेंट के उससे आ रही थी, जो कि एक तरीके से यूरोप का जो फ्यूडल डेकेडेंस था, जो फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी थी, जो पेजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन था, जो फ्यूडल प्लूटोक्रेसी थी, जो उसका एलीट था, उसका इडलनेस, उसका पैरासिटिज्म, उसके खिलाफ वहां के रेवोल्यूशनरी रेडिकल बुर्जुआ क्लास का एक मूवमेंट था जो कि यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन में कल्बिनेट किया। एक अलग, बहुत ही अलग कॉन्टेक्स्ट में इंग्लैंड में क्रॉमवेलियन जो ट्रेडिशन थी, रिपब्लिकन ट्रेडिशन, वो उसको रिप्रेजेंट करता था। और अमेरिका एक ऐसे समय में आपके सुने आया जब उसका डिस्कवरी होता है, उसका 200 साल भी मुश्किल से, पौने 200 साल ऐसा चलता है, जब वहां पर भी अभी स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडोर का जमाना था, वहां पर स्लेव प्लांटेशंस बन रहे थे, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज का लूट और प्लंडर हो रहा था। लेकिन अमेरिका एज ए नेशन जब इस्टैब्लिश होता है 1776 में, वो एक कैपिटलिस्ट नेशन के तौर पे ही इस्टैब्लिश होता है, और उस नेशन का कोई फ्यूडल बैगेज नहीं था। आप कह सकते हैं तरीके से उसका कोई बहुत पुराना फ्यूडल पास्ट या कोई बहुत एंट्रेंच्ड फ्यूडल हिस्ट्री उस नेशन की नहीं। वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी था। यूरोप से तमाम किस्म के लोग, वर्किंग क्लास, बैंडिट, लुम्पन प्रोलेटेरियट, उससे लोग वहां माइग्रेट कर रहे थे यूरोप के अलग अलग देशों से, और वहां पर जो जबरदस्त नेचुरल रिसोर्सेज थे, अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो उनको एक किस्म का ऑस्टेंसिबली अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे। और वहां पर ये टॉम पेन की फिलॉसफी जो फ्यूडल इडलनेस के खिलाफ थी, या फ्रैंकलिन की, बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो फिलॉसफी थी, उनकी बहुत मजेदार बुकलेट है पुअर रिचर्ड एल्मनेक, बेंजामिन फ्रैंकलिन की, जिसमें उन्होंने इस तरह के तमाम एनेक्डोट्स दिए हैं जो फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी को रिडिक्यूल करते हैं, उसके इडलनेस का मजाक उड़ाते हैं, और एक एंटरप्राइज की स्पिरिट जिसको वेबर ने स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म कहा था, और इसीलिए वो शुरुआत में प्रोटेस्टेंटिज्म का एक हॉटबेड भी बना अमेरिका। वो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म अपने आइडियल प्रोटोटाइप में अगर कहीं मौजूद थी तो वो यूरोप नहीं था, वो अमेरिका था, जहाँ पे अपने मोस्ट आइडियलिस्ट इंकारनेशन में वो वेबरियन स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को आप देख सकते हैं। वो अमेरिकन इंडिपेंडेंस की शुरुआत होती है, और उस दौर में उस फिलोसफी का एक रोल था, एक रेवोल्यूशनरी रोल था, और उस रेवोल्यूशन और एक बहुत स्विफ्ट चेंजेस से होकर अमेरिकन हिस्ट्री गुजरती है। उसका दूसरा दौर कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का बड़ा माइलस्टोन आता है, जो सेकेंड अमेरिकन रेवोल्यूशन भी, जिसको कुछ लोगों ने कहा है सिविल वॉर, जो कि सदर्न अमेरिका की स्लेव इकोनॉमी, प्लांटेशन इकोनॉमी के खिलाफ नॉर्दर्न अमेरिका का जो इंडस्ट्रियल राइजिंग इंडस्ट्रियल बुर्जुआजी थी, उस राइजिंग इंडस्ट्रियल बुर्जुआजी और साथ में राइजिंग एंटरप्राइजिंग जो एक पेटी बुर्जुआ था, उसके उसका स्ट्रगल था, एक पुराने मोड ऑफ प्रोडक्शन का एक ज्यादा एडवांस, ज्यादा प्रोग्रेसिव मोड ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्लैश, जो कि एक ज्यादा एडवांस मोड ऑफ प्रोडक्शन के विक्ट्री में खत्म हुआ। वो दौर था जिस समय वहां पर ट्रांसेंडेंटलिज्म की फिलॉसफी काफी इन्फ्लुएंशियल थी, कांट से ये आइडिया वहां पे आया था, इमर्सन वहां पे उस समय सिविल वॉर के समय उसके आप कह सकते हैं फोरमोस्ट फिलोसोफर थे, और वो भी एक तरीके से अपनी इंस्पिरेशन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 का और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन जो टॉम पेन का था, उससे ही अपनी इंस्पिरेशन लेते थे, और एक फ्यूडल इडलनेस और बैकवर्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन के खिलाफ एक आप कह सकते हैं कि एक एंटीथीसिस के तौर पर हुआ था। 1860 से एक मेजर शिफ्ट होता है। आप कह सकते हैं कि 1776 से लेकर 1860 तक वो अमेरिकन कैपिटलिज्म के एक कंसोलिडेशन का दौर था, जब अभी फ्री कंपटीशन की आइडियोलॉजी, हेगेमोनिक आइडियोलॉजी थी, फ्री कंपटीशन के ही मॉडल पे अमेरिकन कैपिटलिज्म काम कर रहा था, और चूंकि वो इनवर्ड और आउटवर्ड उसका एक्सपेंशन की पोटेंशियलिटी अभी बहुत ज्यादा थी, इसलिए अभी वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास का कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी उस तरीके से ऊपर नहीं आ रहा। उस दौर में एक हेजेमनिक आइडियोलॉजी के तौर पे ये यूटिलिटेरियन एम्पिरिसिस्ट फिलॉसफी अमेरिकन मासेज में पैदा हुई, और जो अमेरिकन इडियम्स में भी आती है, व्हाट इट्स गुड फॉर, इससे क्या फायदा। इमीडिएटली फायदे की एक सोच, इमीडिएटली यूटिलिटी की एक सोच, एक वल्गर और एक आप कह सकते हैं क्रूड किस्म का यूटिलिटेरियनिज्म, जिसका आप कह सकते हैं कि वो इंस्पिरेशन एक तौर पे से बेकन और लॉक से ही ले रहे थे, फ्रांसिस बेकन और लॉक से, क्योंकि इमीडिएट व्हाट एवर इज यूजफुल इमीडिएटली इज विंडिकेटेड फिलोसॉफिकली, जो इमीडिएटली यूजफुल है वो फिलोसॉफिकली भी विंडिकेट होता है, और पास्ट के एक्सपीरियंसेस का और उसके जनरलाइजेशन का और उसके बेसिस पे किसी जनरल थियरी को निकालना सोसाइटी की या हिस्ट्री की, ये बेकार है। जो इमर्सन ने कहा भी था कि आई एम अ ट्रेवलर, आई डोंट हैव अ बैगेज ऑफ पास्ट ऑन माई बैक, आई जस्ट डू, मैं बस करता हूँ। तो ये जो ट्रायल एंड एरर के जरिए सक्सेस तक पहुंचने का एक प्रैग्मेटिस्ट मेथड था, उसका बिगनिंग तो 1860 से पहले ही था, लेकिन तब उसका एक प्रोग्रेसिव रोल था। 1860 में जब अमेरिकन कैपिटलिज्म अपने एक कंसोलिडेशन के दौर में पहुंचता है और 1880s 1890s तक वहां पर एक आप कह सकते हैं मोनोपोलाइजेशन की प्रोसेस बहुत तेजी से चलती है, जो स्मॉल प्रोप्राइटर क्लास था जिसको पेटी बुर्जुआ आप कह सकते हैं इस तरीके से, वो स्मॉल प्रोप्राइटर क्लास बहुत तेजी से उजड़ा। तो उस समय वहां पे लेट 1880s में और 1890s में उसके खिलाफ एक पूरा प्रोग्रेसिव मूवमेंट खड़ा हुआ। वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट कोई वर्किंग क्लास प्रोग्रेसिव मूवमेंट नहीं था, वो बेसिकली एक पेटी बुर्जुआ प्रोग्रेसिव मूवमेंट था, और उस मूवमेंट का जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन सबसे कैरेक्टरिस्टिक तौर पर आया वो आया पॉपुलिस्ट एक पार्टी की, उसका नाम ही था पॉपुलिस्ट पार्टी, पॉपुलिस्ट पार्टी के तौर पर आया। और उसके जस्ट प्रीकर्सर के तौर पर आप चार्ल्स बियर्ड, मैरी बियर्ड इन लोग को देख सकते हैं, जो कि पेटी बुर्जुआ एस्पिरेशन को एक्सप्रेस कर रहे थे। जैसे जैसे बिग कैपिटलिस्ट का एक क्लास पैदा हो रहा था, स्मॉल प्रोप्राइटर तबाह हो रहे थे, वैसे स्मॉल प्रोप्राइटर का क्लास एक थ्राइविंग कैपिटलिज्म के फ्रूट्स में, उसके सरप्लस एसोसिएशन में ज्यादा बड़े हिस्से के लिए एक पेटी बुर्जुआ प्रोग्रेसिव मूवमेंट लग रहे थे। और जो प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी थी, चार्ल्स पियर्स, विलियम जोन्स और उसके तीसरे बड़े फिगर जॉन डी थे, वो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी बेसिकली प्रोग्रेसिव मूवमेंट से ही थी, जो ये पेटी बुर्जुआ का प्रोग्रेसिव मूवमेंट 1890s में पैदा हुआ। तो ये पूरा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जिसमें प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी पैदा हुई। ये पेटी बुर्जुआ प्रोग्रेसिव मूवमेंट और प्रैग्मेटिस्ट फिलॉसफी, ये बिग कैपिटल और मोनोपोलिस्ट जो प्लूटोक्रेसी थी उससे भी उतनी ही नफरत करती थी, लेकिन अपने आप को वर्किंग क्लास से आइडेंटिफाई भी नहीं करती। वर्किंग क्लास का एक हिस्सा था उस प्रोग्रेसिव मूवमेंट में उस समय तक, लेकिन वो दे टुक इक्वल पेन टू डिफ्रेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम दैट वर्किंग क्लास मूवमेंट। लेट 1890s में वर्किंग क्लास मूवमेंट इस प्रोग्रेसिव मूवमेंट से अलग होता है, पॉपुलिस्ट मूवमेंट पार्टी का मूवमेंट कोलैप्स करता है, और कोलैप्स करने के बाद जो भी उसके बचे खुचे तत्व थे, एलिमेंट्स थे, वो मर्ज करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। और आज जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग पॉपुलिस्ट पार्टी वाला ट्रेंड है। इनफैक्ट जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट चला था उसको बहुत लोगों ने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट करार दिया था, लेकिन बेसिकली वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट नहीं था, वो एक रिग्रेसिव मूवमेंट था। हिस्टोरिकली इमीडिएटली पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव था, लेकिन हिस्टोरिकली रेग्रेसिव था। वो उन वर्कर्स का मूवमेंट नहीं था जिनके पास वास्तव में खोने के लिए कुछ नहीं है, वो उस पेटी बुर्जुआजी का मूवमेंट था जिसके सर पर डिस्पोजेशन की तलवार लटकी हुई इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान। तो और वो उसी पॉपुलिस्ट पार्टी का, अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन में देखें, एक लंबे ड्यूरेशन में देखें, तो ओडब्ल्यूएस का जो पूरा मूवमेंट था वो कोई आइसोलेटेड हिस्टोरिकल फिनोमेनन नहीं है जो कि अमेरिकन सोसाइटी में अचानक पैदा हुआ, उसकी एक लंबी हिस्ट्री है और उसको आप ट्रेस कर सकते हैं 1890s से। बहरहाल तो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये था कि एक मोनोपोली कैपिटलिज्म के दौर में एक कैपिटलिस्ट मोनोपोलिस्ट प्लूटोक्रेसी के पैदा होने के साथ और स्मॉल प्रोप्रिएटर्स के डिस्पोजेशन के साथ स्मॉल प्रोप्रिएटर्स का एक मूवमेंट था, प्रोप्राइटर्स का एक मूवमेंट था कि हमसे मत छीनो, बेसिकली इस मूवमेंट का बेसिक स्लोगन ये था। और वो किसी भी तौर पर रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर प्रोग्रेसिव था, लेकिन वो सबवर्सिव नहीं था, और सबवर्सिव नहीं था ये प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर खुद भी बोलते थे कि हम सिस्टम को अपटर्न नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी तब तक की भी जो हालत थी वो कैपिटलिज्म के बूते ही उनको मिला, और अब कैपिटलिज्म के एक नए स्टेज में जब वो उनसे छीना जा रहा था तो उनका एक किस्म का रोमांटिक रिएक्शन था, अ काइंड ऑफ अ नॉस्टैल्जिया फॉर पास्ट, कि पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा क्यों हो गया। और ये हर देश में कहा जाए कि जब भी बिग कैपिटल और मोनोपोलिस्ट बुर्जुआजी पैदा होती है तो इस तरह के मूवमेंट्स पैदा होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी पैदा हुआ, विनोबा भावे के गोदाम से लेकर जेपी मूवमेंट से लेकर अन्ना हजारे और आम आदमी पार्टी का मूवमेंट उसी पेटी बुर्जुआजी के एस्पिरेशन को एक्सप्रेस करता है, जिससे जो पूरी तरह आबाद भी नहीं है लेकिन पूरी तरह बर्बाद भी नहीं है, लेकिन जिसके सर पे बर्बादी की एक तलवार लगातार लटकी रहती है कि वो बर्बाद हो सकता है कभी, और इसलिए उसका एक्सप्रेशन इस किस्म के वेग स्लोगन में, एम्प्टी स्लोगन में आता है। भारत माता की जय, भ्रष्टाचार खत्म, एम्प्टी स्लोगन अपने आप में गैर मीनिंग है। भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करें, मतलब भ्रष्टाचार तो सिम्टम है क्योंकि उसका कॉज कोई होगा, तो इस करके पॉलिटिकली एम्प्टी स्लोगन को पैदा करता है क्योंकि पेटी बुर्जुआ क्लास का वर्ल्ड व्यू ही वही होता है, वो त्रिशंकु की तरह अधर में लटका हुआ है और वो पूरी तरह कभी फैसला नहीं कर पाता है कि मैं नीचे देखूं या ऊपर देखूं, और ऐसे मूवमेंट हमेशा इसी किस्म की कंफ्यूज आइडियोलॉजी पैदा करते हैं, जिस किस्म की कंफ्यूज आइडियोलॉजी प्रैग्मेटिज्म भी था और अलग अलग देशों में पेटी बुर्जुआ फिलोसफी की डिफरेंट ब्रीड एंड ट्रेंड एंड टेंडेंसी होते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि भाई कोई भी फिलोसफी आसमान से नहीं टपकती है, और प्रैग्मेटिक फिलोसफी भी अमेरिकन फिलोसफी को फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट में, अगर किसी अमेरिकन कॉन्टिनेंटल फिलोसफी की बात की जाए तो उसके डेवलपमेंट से प्रैग्मेटिज्म भी आसमान से नहीं टपकता। हर नई फिलोसफी अपने प्रीडिसेसर के ऊपर बिल्ड करती है, इट बिल्ड्स अपॉन इट्स प्रीडिसेसर, और प्रैग्मेटिज्म भी अपने प्रीडिसेसर के ऊपर बिल्ड करता है, और उसके कुछ प्रिंसिपल इन्फ्लुएंसेस है प्रैग्मेटिज्म के। प्रैग्मेटिज्म कहां से लेता है अपनी फिलॉसफी को, और हर नई फिलॉसफी पुरानी फिलॉसफी के साथ एक सबलेशन और निगेशन की प्रोसेस से कुछ चीजों को लेती है और उसको अपने टाइम के सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड और रिमोल्ड करती है। किसी भी आइडिया के डेवलपमेंट का यही प्रोसेस होता है, फिलॉसफी के डेवलपमेंट का यही प्रोसेस होता है। प्रैग्मेटिज्म के जो बेसिक, आप अगर बहुत ही मैकेनिकली अगर आप उसको, जिसके अपने खतरे होते हैं, मैकेनिकल रिडक्शन नहीं करने चाहिए लेकिन सोशल साइंस में इसकी अपनी यूटिलिटी भी होती है कई बार, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, अगर प्रैग्मेटिज्म के प्रिंसिपल इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म, यूरोपियन कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉजिटिविज्म, हेगेलियन आइडियलिज्म और डार्विनिस्ट एवोल्यूशनिज्म, ये चार आप कह सकते हैं कि मेजर इन्फ्लुएंसेस जो जॉन ड्यूई के फिलॉसफी पे थे वो थे। अब इनसे वो क्या क्या लेते थे अभी हम इस पे आएंगे बात में, लेकिन इनसे जो कुछ भी उन्होंने लिया इसको उन्होंने रीशेप किया, रीमोल्ड किया, और उस दौर का जो पेटी बुर्जुआ का मूवमेंट था अमेरिकन सोसाइटी में, उस पेटी बुर्जुआ का जो लिबरल रिफॉर्मिज्म था, उस लिबरल रिफॉर्मिज्म के हिसाब से एम्पिरिसिज्म से भी कुछ लिया, पॉजिटिविज्म से भी कुछ लिया, डार्विनिस्ट एवोल्यूशनिज्म से भी कुछ लिया, हेगेलियन आइडियलिज्म से भी कुछ लिया, और उसको सिंथेसाइज किया उस समय के सिचुएशन के मुताबिक, उस समय के पेटी बुर्जुआ लिबरल जो रिफॉर्मिज्म था उसके मुताबिक, जो उनकी लिबरल रिफॉर्मिस्ट एस्पिरेशन थी उसके मुताबिक। अब इसमें बहुत डिटेल में जाने साथियों की हमें अम्बेडकर की पॉलिटिकल प्रैक्टिस से आना है, इसलिए इस चीज पे कि प्रैग्मेटिज्म के बेसिक टेनेट्स क्या, प्रैग्मेटिज्म क्या बोलता है, बेसिक प्रैग्मेटिक फिलोसफी का इडियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल प्रेजुडिस क्या, उसके बेसिक प्रोपोजिशन क्या, ये समझना जरूरी है। जो ड्यूइयन प्रैग्मेटिज्म था वो सिंपल प्रैग्मेटिज्म नहीं था, ड्यूई ने उसको अलग नाम दिया था जिसको प्रोग्रेसिव एक्सपेरिमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटलिज्म या ऑपरेशनलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। उसके जो बेसिक टेनेट्स थे वो एक ये था कि आप नेचर या सोसाइटी के डेवलपमेंट का कोई जनरल थ्योरी नहीं दे सकते, पहली चीज, यानी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है प्रैग्मेटिज्म का वो ये है कि अ नेचुरल एनिमोसिटी टू थियरी, किसी भी किस्म की जनरल थियरी नहीं होनी चाहिए नेचर की या सोसाइटी की, और उसका बेसिक जो इससे जुड़ी हुई बात थी प्रैग्मेटिज्म की वो ये था कि जो कुछ हो रहा है हमारे सामने मटीरियल रियलिटी में, भौतिक यथार्थ में, उसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके कॉजेशन पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मटेरियल रियलिटी का कोई कॉजेशन नहीं किया जा सकता, यानी कि ड्यूरी का पास्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट के लिए किसी भी फॉर्म में, ऑब्वियसली पूरी तरीके से पास्ट प्रेजेंट को डिटरमाइन नहीं करता वरना पास्ट और प्रेजेंट के कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं रह जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली पास्ट का एक रोल होता है शेप करने में फ्यूचर को, और प्रेजेंट की एक हिस्ट्री होती है। ड्यूरी का बेसिक आर्ग्यूमेंट ये था कि प्रेजेंट की कोई हिस्ट्री नहीं है क्योंकि कॉजेटिव प्रिंसिपल बेकार, कॉजेशन नहीं हो सकता, कारणात्मक व्याख्या कॉज एंड इफेक्ट इफेक्ट एनालिसिस ये नहीं हो सकती है। और इसीलिए मॉडर्न पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसफी ने भी ड्यूई से बहुत कुछ लिया है। ये कॉग्निटिव प्रिंसिपल के खिलाफ जो एक बेसिक एनिमोसिटी है प्रैग्मेटिक फिलोसफी की, वो पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसफी के लिए भी काफी यूजफुल साबित हुई है, लेकिन अभी उससे नहीं जाते हैं। तो पहला ये था कि कोई आपका अप्रोच नहीं होना चाहिए, कोई आपका वर्ल्ड व्यू नहीं होना चाहिए, कोई आपकी फिलोसफी या थियरी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि आप रियलिटी को ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्व करके आपका जो सेंस परसेप्शन बनता है, अपने इंद्रियों से आप जो कुछ देखते हैं और जो आपका फिनोमिनल एस्पेक्ट को देख के जो आपका आइडिया बनता है, उस आइडिया के मुताबिक तुरंत कोई प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए जिसको अमल किया जाए। और ये प्लान ऑफ एक्शन अगर वैलिडेट होता है प्रैक्टिकली तो यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट, अगर ये वैलिडेट नहीं होता है तो यू हैव टू टेक अनदर प्रोविजनल आइडिया एंड इम्प्लीमेंट इट। जिसको ड्यूई ने कहा कि मेरा मेथडोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि किसी भी किस्म का सोशल इंक्वायरी, सोशल मूवमेंट या सोशल एक्सपेरिमेंट वो ट्रायल एंड एरर पे होना चाहिए। आप एक प्रोविजनल आइडिया को लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो असफल होता है, आप दूसरा प्रोविजनल एक जनरल आइडिया लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन अगर आप कई असफलताओं से गुजरते हैं तो आपको उसका एनालिसिस करने या क्रिटिकल री इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं कि मेरे अप्रोच में क्या गलती है, मेरे थियोरेटिकल स्टैंड पॉइंट में क्या गलती है जिसकी वजह से मेरा बेसिक प्रोविजनल आइडिया गलत है। ड्यूई के लिए ये दिस वाज़ नो सिग्निफिकेंस। इसलिए कोई थियरी नहीं होना चाहिए, प्रैग्मा, केवल प्रैग्मा इंपॉर्टेंस रखता है, डॉग्मा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इमीडिएटली जो आपको फ्रूटफुल लगे, यूटिलिटी वाला लगे, वो इम्प्लीमेंट करो। और इसी को उन्होंने बोला प्रोग्रेसिव एक्सपेरिमेंटेशन, कि आपको लगातार बस एक्सपेरिमेंट करते जाना है टिल द टाइम यू सक्सीड विदाउट एनालाइजिंग योर पास्ट फेल्योर और पास्ट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि पास्ट एक्सपेरिमेंट के फेल्योर का कोई कॉजेशन पॉसिबल नहीं। ये पहला थिंग है ड्यूईयन इंस्ट्रूमेंटलिज्म का। दूसरा जो कि ये वो लेते हैं ह्यूम और कांट से, जो पॉजिटिविस्ट और एम्पिरिकल ट्रेडिशन थी, ब्रिटिश और फ्रेंच, और कोंते से, कोंते से काफी बोरो करते हैं। एक जगह ड्यूई ने लिखा भी है कि मैं कोंते, आई ओव अ लॉट टू कोंते। तो ऑब्वियस कोंते से काफी कुछ लेते हैं, ह्यूम और कांट से काफी कुछ लेते हैं, जो कि एक क्रूड एम्पिरिसिज्म और पॉजिटिविज्म, व्हाट अपीयर्स इज ट्रू, मतलब अपीयरेंस और एसेंस के बीच में, फेनोमेना और एसेंस के बीच में कोई फर्क नहीं है। अपीयरेंस इज फेनोमेना, सॉरी फेनोमेना इज एसेंस, आपको जो दिख रहा है वो फर्स्ट है। पॉजिटिविज्म जो कि अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों ने कहा, बर्थ बर्थ को जीचो और वो सम, उसी का एक नारा था कि मैं सोचता हूँ इसलिए यह है, मैं सोचता हूँ। और ये ड्यूई भी मानते थे, उन्होंने कहा ह्यूमन इंटेलिजेंस के पहले मटीरियलिटी की कोई हिस्ट्री नहीं है, मतलब जब इंसान पैदा हुआ उसने ऑब्जर्व किया कि दुनिया है, तभी दुनिया थी, जिसको वो बोलते थे कि पूरी रियलिटी इज बेसिकली अ डोमेन ऑफ प्योर एक्सपीरियंस। ये प्योर एक्सपीरियंस शब्द वो उन्होंने ह्यूम और कांट से लिया था, जो एग्नोस्टिक क्रिटिकल फिलोसफी थी ह्यूम और कांट की। दूसरा जो ये जो पहला टेनेट था उसका मैं इंस्पिरेशन बता रहा था। दूसरा था कि कोई भी डेवलपमेंट, चाहे वो सोसाइटी में हो या नेचर में हो, वो इंक्रीमेंटल और ग्रेजुअल होता है। ये डार्विन का नारा था कि नेचर डजंट टेक लीप, नेचर में कोई लीप नहीं होता है, और वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है जिसमें जीन म्यूटेशन के जरिए अलग अलग प्रॉपर्टीज एक्युमुलेट करते हुए बस डेवलप होते रहते हैं। बाद के बायोलॉजिकल साइंस ने हमें बताया और जेनेटिक साइंस ने और जेनेटिक पूल की हिस्ट्री ने हमें बताया कि नेचुरल डेवलपमेंट में लीप्स होते हैं, और एवोल्यूशन का बेसिक जो क्राइटेरियन है वो लीप है ना। आप मान लीजिए कि नियंडरथल से ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और उसके बाद होमो सेपियंस सेपियंस, इसमें जो चेंज हो रहा है, एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में लीप लगने से पहले डेफिनेटली एक्युमुलेशन होता है नए ट्रेस का, नए जेनेटिक ट्रेस का एक्युमुलेशन होता है थ्रू म्यूटेशन। जो लोग साइंस के स्टूडेंट है वो मुझसे बेहतर इस बात को जानते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू नए ट्रेस का एक्युमुलेशन होता है, और वो एक्युमुलेशन अंततः एक ऐसी मंजिल पर पहुंचता है जहां पे नई रियलिटी पुराने खोल में, पुराने शेल में एक्सप्रेस नहीं कर सकती और लीप्स लगती है जेनेटिक एवोल्यूशन में। आज ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, लेकिन डार्विन का जो एवोल्यूशनिज्म था उसमें ग्रेजुअलिज्म का पता। तो कोई भी डेवलपमेंट नेचर या सोसाइटी में वो ग्रेजुअली होता है, उसमें कोई लीप नहीं लगती है। यानी कि इसको अगर सोशल पॉलिसी में ट्रांसलेट करें, कोई भी सोशल चेंज सबवर्सिव तरीके से नहीं हो सकता है, रेवोल्यूशनरी तरीके से नहीं हो सकता है, रेडिकल तरीके से नहीं हो सकता है। हर सोशल चेंज जस्ट लाइक नेचुरल एवोल्यूशन अबाउट विच अम्बेडकर एंड ड्यूई एंड डार्विन हैड अ वेरी इनकरेक्ट आइडिया, एकदम ग्रेजुअली होता है। लेकिन ड्यूई ने जो लिखा कि हर नेचुरल डेवलपमेंट की तरह सोसाइटी में भी हर डेवलपमेंट ग्रेजुअल होता है, इंक्रीमेंटल होता है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं होता है, वो हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। 1 2 3 4 5 6 1 2 4 8 के तरीके से नहीं होता है डेवलपमेंट, वो हमेशा इंक्रीमेंटल होता है। तीसरा जो मेजर जिससे हम बात किए भी कि रियलिटी का कोई कॉजेशन नहीं, तीसरा बड़ा जो वो है कि हमें आज सोसाइटी को अगर आगे ले जाने के लिए कोई सोशल एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें इसके एवोल्यूशन को समझना इज नॉट अ प्री कंडीशन। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी टू चेंज इट। ये एक तीसरा मेजर चैनल था ड्यूइज़म प्रैग्मेटिज्म का। और इसीलिए ड्यूई का जो सोसाइटी का कॉन्सेप्शन था, ये चौथा मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। ड्यूई बोलते थे सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्पेरिट ग्रुप्स। उस डिस्पेरिट ग्रुप्स में सब कुछ आता है, एक बेसबॉल टीम भी आती है, एक मर्चेंट एसोसिएशन भी आता है, एक ट्रेड यूनियन भी आता है, एक स्टूडेंट यूनियन भी आता है। ऑल दीज डिस्पेरिट सोशल ग्रुप्स कलेक्टिवली फॉर्म द सोसाइटी। सोसाइटी में कोई रियल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है, ड्यूई ये बोलते थे। लेकिन शब्दों पे यहाँ गौर करना जरूरी है, वो बोलते थे रियल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है, लेकिन वो बोलते थे कि कॉन्ट्रडिक्शन परसीव्ड होता है, वो आइडिया के प्लेन पे होता है। इवेंट या मैटर की हिस्ट्री में या इंसान के सोचने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है उस तरीके से अपने आप में, वो कॉन्ट्रडिक्शन रियली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ परसीव्ड होता है, वो एक परसेप्शन के लेवल पे होता है, वो वाकई में नहीं होता है। इसीलिए सोसाइटी में भी जो अब तक सोसाइटी का हिस्ट्री है उसको आप सोशल एंटेगनिज्म या सोशल कॉन्ट्रडिक्शन से नहीं समझ सकते हैं। जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो आइडियोलॉजिकली अपने आप को परसेप्टिव वे में एक्सप्रेस करते हैं, और वो कॉन्ट्रडिक्शन को रिजोल्व करने का काम कौन करता है, वो करता है स्टेट। और यहां से पांचवें टेनेट पे हम आ सकते हैं ड्यूइज़म प्रैग्मेटिज्म के जो मेजर फाउंडेशन है कि स्टेट जो है वो, जहां से रूसो और लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी लेते हैं कि इंडिविजुअल्स ऑफ सोसाइटी कम टूगेदर एंड दे सरेंडर देयर राइट्स एंड देयर फ्रीडम टू अ सॉवरेन बॉडी इलेक्टेड बाय देम व्हिच वी कॉल स्टेट। तो स्टेट एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और ये स्टेट ही मोस्ट रैशनल एक्टर है, जिसको ड्यूई अम्बेडकर ने भी बोला है मोस्ट रैशनल एक्टर होता है सोसाइटी में स्टेट। स्टेट मोस्ट रैशनल एक्टर है, और सोसाइटी में किसी भी चेंज के लिए स्टेट एफर्मेटिव एक्शन लेता है, फ्रॉम बिलो कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर सोसाइटी में ऑप्रेस्ड आबादी है तो वो स्टेट के खिलाफ कोई सबवर्सिव एक्शन कलेक्टिवली करे, ये गलत है। और ड्यूई ने लिखा था कि एनी कलेक्टिव एक्शन विच यूजेस फोर्स टू सबवर्ट स्टेट इज परनिशियस, सो वायलेंस इज वेस्टफुल, वायलेंस इज अ वेस्ट। ये ड्यूई का क्लियर कट बिलीफ था, और अम्बेडकर का भी क्लियर कट बिलीफ था कि पूरे सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आपको चेंज लाना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इन्फ्लुएंस द स्टेट, द सॉवरेन बॉडी विच हैज बीन चोजन बाय द पीपल थ्रू कंसेंसस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, और वो स्टेट कोई भी चेंज लाएगा। अफर्मेटिव एक्शन इज बेसिकली ए टर्म विच इज जक्स्टापोज टू एक्शन फ्रॉम बिलो, नेगेटिव एक्शन, नेगेटिव एक्शन के खिलाफ के बरक्स या उसके जक्स्टापोजिशन में अफर्मेटिव एक्शन। इसलिए कोई भी सोशल चेंज फ्रॉम बिलो नहीं होता है, फ्रॉम अबव होता है। और इसीलिए अम्बेडकर हमेशा इंटेलेक्चुअल्स के रोल पे, आप स्टेट एंड माइनॉरिटीज पढ़िए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़िए, अनटचेबल्स हु आर दे एंड हाउ दे बिकेम अनटचेबल्स, अनटचेबल सन ऑफ पायर, जो उनका बेसिक इडियोलॉजिकल पॉलिटिकल राइटिंग है, हर राइटिंग एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हर राइटिंग में इंटेलेक्चुअल्स के रोल पे अम्बेडकर बहुत इंटरप्राइज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि दिस इज द सोशल फोर्स विच कैन इन्फ्लुएंस द ग्रेट मीडिएटर स्टेट इन टर्म्स ऑफ जॉन ड्यूई। तो ये इंटेलेक्चुअल ये एक रोल प्ले करेंगे। ये बात अलग है कि बाद में आखिरी वक्त में अम्बेडकर ने जो दलित के बीच में से इंटेलिजेंसिया पैदा हुआ था उससे अम्बेडकर ने बहुत नाराजगी व्यक्त की थी। धनंजय कीर ने उसके बारे में भी लिखा है, उन्होंने कहा था कि ये अब हमारे लोग नहीं रहे, ये जो इंटेलिजेंसिया पैदा हुआ है ब्यूरोक्रेसी में या हायर इकोनॉमिक ऑफ सोसाइटी में पहुंच गया है, नाउ दे डोंट रिलेट टू वर्किंग क्लास कलीग, जो वास्तव में कास्ट का ब्रंट सबसे ज्यादा झेलते हैं, उससे ये जो इंटेलिजेंसिया दलित के बीच से पैदा हुआ है और वो मेरी पॉलिसी के जरिए ही पैदा हुआ है रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन के, लेकिन दिस पॉलिसी हैज फेल्ड मिजरेबली, क्योंकि हमको ये लगता था कि अगर दलित के बीच में से एक इंटेलिजेंसिया पैदा हो तो इट कैन परसुएड हिंदू सोसाइटी टू चेंज इट्स वे। ये बहुत बड़ा एनिमेशन ऑफ कास्ट की यही की शुरुआत करते हैं अम्बेडकर कि पहला स्ट्रेटेजी क्या होगा, उसके बाद में हम आएंगे। तो ये बेसिक टेनेट है। अब इसको सोशल और पॉलिटिकल फिलॉसफी में रिड्यूस किया जाए अगर ड्यूरियन प्रैग्मेटिज्म को, जो पॉलिटिक्स में अम्बेडकर के एक्सप्रेस हुआ, तो वो दो चीज में आता है। अच्छा हाँ, एक चीज और, ड्यूरियन प्रैग्मेटिज्म, ड्यूई ने एक 1890 में एक ट्रैक्ट लिखा था, उसका नाम था कॉमन फेथ, वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हैं, कॉमन फेथ उसका नाम है। उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं किसी पैरानेचुरल फोर्स में बिलीव नहीं करता, गॉड जैसे किसी फोर्स में, लेकिन गॉड खत्म नहीं होना चाहिए, गॉड रहना चाहिए एज अ सिंबल ऑफ अ ह्यूमनिस्ट रिलीजन, ह्यूमनिस्ट कोड ऑफ एथिक्स, और इस तौर पे सोसाइटी में रिलीजन नहीं खत्म होना चाहिए। और अंबेडकर ने भी कहा था, आई कोट, इट पेन्स मी टू सी द यूथ ऑफ सोसाइटी टर्न अवे फ्रॉम रिलीजन, दोज हू थिंक दैट आई डोंट बिलीव इन रिलीजन आर एट फॉल्ट, आई डू बिलीव इन रिलीजन because this has it has been the base of all civil government in the history of society, jo bhi civil government hai unka base religion raha hai, kyunki affirmative action ke jariye state society mein paida hone wali sari disparities ko dur nahi kar sakta, aur wo disparities mein jo gap chhutta hai affirmative action ke bawajood, wo gap aap state policy se nahi dur kar sakte, usko aapko individual to individual relationship ke plane ka dur karna padta hai, aur isliye सोसाइटी में एक एथिकल ह्यूमनिस्ट कोड के तौर पर रिलीजन की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। ये अम्बेडकर का और ड्यूई का फर्म बिलीव था, और अम्बेडकर आखिरी टाइम तक इस पे कायम, इसमें आप शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं अम्बेडकर की राइटिंग, तो इसमें अम्बेडकर ने कभी कोई चेंज नहीं किया, इससे वो फर्मली स्टैंड करते थे अंत तक। अब इस पूरे प्रोग्राम को, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ड्यूइन प्रोग्राम को, अगर आप पॉलिटिकल प्रोग्राम या सोशल प्रोग्राम में कन्वर्ट करें तो उसको किस तरीके से आप देख सकते हैं, दो बेसिक चीजें, एक सोशल चेंज का प्रिंसिपल एजेंट हमेशा स्टेट होता है, स्टेट सोशल चेंज को इंजेंडर करता है, सोसाइटी में कोई भी ऑप्रेस या एक्सप्लॉइटेटिव कलेक्टिव अगर ऑर्गेनाइज होकर फ्रॉम बिलो कोई रेजिस्टेंस वेज करता है तो इट्स एंड इन बेसफुल वायलेंस। ये पहला ड्यूई की पॉलिटिकल टीचिंग है। दूसरी टीचिंग ये है कि स्टेट को इस वजह से अफर्मेटिव एक्शंस के जरिए सोसाइटी में मौजूद डिस्पैरिटीज को ब्रिज करना चाहिए, और यहीं से अम्बेडकर का इकोनॉमिक प्रोग्राम निकलता है, जो कि बेसिकली एक प्रैग्मेटिक स्टेडियन प्रोग्राम था वेलफेयर स्टेट का। तीसरी चीज की जो स्टेट के अफर्मेटिव एक्शन के बावजूद जो गैप होंगे, सोशल डिस्पैरिटीज जहां पर नहीं पूरी हो पाएंगी, उनको नहीं भर पाएगा स्टेट, उसके लिए आपको सोसाइटी में एक एथिकल कोड के तौर पे, एक ह्यूमनिस्ट कोड के तौर पे, एक ह्यूमनिस्ट रिलीजन की जरूरत। ये तीन बेसिक चीज है, और अम्बेडकर इस मामले में रिमार्केबली कंसिस्टेंट है कि वो इन तीन चीजों से कभी नहीं हटे, कभी भी नहीं हटे। 1916 से लेकर 1956 में अपने डेथ तक वो इससे कायम रहे। कुछ लोगों ने अपने मेमोर्स में लिखा है, अम्बेडकर के रेमिनिसेंसेस में लिखा है कि अम्बेडकर अपने आखिरी वक्त में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी, प्रमुख उत्तराधिकारी से क्या नाम था, दादा साहेब गायकवाड़ को कहा था कि अगर आरपीआई की स्ट्रेटेजी फेल करती है तो ज्वाइन द कम्युनिस्ट। बहुत लोगों ने इंक्लूडिंग आनंद तेलतुंबड़े, आईएलपी या फिर बाद में अम्बेडकर की आखिरी बात को इस रूप में इंटरप्रेट किया है कि अम्बेडकर अब मार्क्सिज्म की तरफ झुक रहे हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। और अगर अम्बेडकर जिंदा होते तो इस पे ऑब्जेक्ट करते कि नहीं, मैं मार्क्सिज्म की तरफ नहीं झुक रहा, दिस इज इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सपेरिमेंटेशन कि अगर अंत में यह भी फेल करता है तो कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करो। ये आखिरी उनका जो एक तरीके से पोलिटिकल मैसेज था दादा साहेब गायकवाड़ को, आप धनंजय कीर को देख सकते हैं इसके लिए। तो ऐसा नहीं कि अम्बेडकर मार्क्सिस्ट बन गया था, अम्बेडकर मार्क्सिज्म का, ये आनंद तेलतुंबड़े ने ठीक ही लिखा है कि मार्क्सिज्म का उन्होंने एक भी किसी ओरिजिनल वर्क का स्टडी नहीं किया था, मतलब मार्क्सिज्म के बारे में उन्होंने जो किताब लिखी थी बुद्धा एंड मार्क्स, उसमें उन्होंने शुरू में लिखा है कि मैंने त्रिपिटकों का अध्ययन किया बुद्धिज्म को जानने के लिए, लेकिन उन्होंने एक भी वो नहीं बताया कि उन्होंने मार्क्सिज्म की किस क्लासिकल उसका अध्ययन किया। और यहाँ तक कि उन्होंने ये बताया कि 1917 में कैपिटल के प्रकाशित होने के 70 ईयर्स के बाद, यानी कि उन्हें पता नहीं था कि कैपिटल कब पब्लिश हुई थी, तो उन्होंने मार्क्सिज्म का कोई सीरियस स्टडी कभी किया नहीं था, और सीरियस क्या मतलब स्टडी नहीं किया मार्क्सिज्म का, और मार्क्सिज्म के बारे में उनके जो भी नोशन थे वो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कार्ल बेंगर, जो ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक प्रोपोनेंट था, मोनिटाइजेशन जो लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से, मॉनिटरी कार्ल बेंगर मॉनिटरी स्कूल ऑफ फिलोसफी था, जो ये बोलता था कि जो कमोडिटी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में जो डिस्पैरिटी है उसको मिंटिंग के जरिए आप हल कर सकते हैं। इनफैक्ट अम्बेडकर ने इसके प्रीसाइज लिखा था, वो भी ऑनलाइन है, जिसमें अम्बेडकर ने कहा था मिंटिंग के काम को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, यानी कि रिजर्व बैंक जो काम करता है इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए अम्बेडकर का इशू। इसलिए वैसे कई लोग ये भी बोलते हैं कि अम्बेडकर भारत के पहले फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट थे, हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। अम्बेडकर के उस पूरे इकोनॉमिक थॉट के एवोल्यूशन में बहुत सारे मंजिलें आती हैं, एक टाइम में वो इन्फ्लुएंस थे, एक टाइम में डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस थे जो कार्ल बेंगर का ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स था, लेकिन बाद में उनके मेजर इन्फ्लुएंस केवियन इकोनॉमिक्स का, केवियन पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स प्लस प्रैग्मेटिस्ट फिलोसफी। तो उनका इकोनॉमिक प्रोग्राम जो निकलता है वो काफी हद तक लेबर पार्टी ब्रिटेन का जो प्रोग्राम था, आप अगर दोनों का प्रोग्राम स्टडी करें तो यू फाइंड रिमार्केबल सिमिलैरिटी, मतलब दोनों का इवन सीरियल लैंड क्वेश्चन को लेकर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सीरियल है पॉइंट वो भी उससे मिलता जुलता है, वो बेसिकली उसी से। और अम्बेडकर इसको छिपाते नहीं थे, अम्बेडकर बोलते थे कि हाँ मैंने वहां चल गया, अम्बेडकर ने इसको कभी छिपाया नहीं, और इससे नॉवेल्टी भी क्लेम की ये इकोनॉमिक प्रोग्राम मैंने इन्वेंट किया, उन्होंने साफ साफ बताया कि मैंने ये यहां से मेरी इंस्पिरेशन ये है। तो अब इन जो बेसिक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स का ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और जिसको अंबेडकर ने सेट खुली पूरे अपने जीवन में लागू किया, हमेशा अपने निजी जीवन में भी लागू किया, अपने प्राइवेट पर्सनल लाइफ में भी लागू किया, अपने पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटिकल राइटिंग्स में भी लागू किया, उसके वजह से अंबेडकर की पॉलिटिक्स किस तौर पर प्रैक्टिस में उतरी, प्रैक्टिस में आई, इसको देखेंगे तो और चीजें मुझे लगा कि और मुझे क्लैरिटी आई उसकी वजह से उसको समझने में, कि किस तरीके से आप अम्बेडकर के पूरे पॉलिटिकल प्रैक्टिस में आप ड्यूइंग प्रैग्मेटिक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट प्रोग्राम को उतरते हुए देखते हैं एकदम, मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन आप उसको एकदम प्योर फॉर्म में उतरते हुए देखते हैं। अम्बेडकर के एकेडमिक पॉलिटिकल कैरियर दोनों को साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए, क्योंकि कोई ए पॉलिटिकल एकेडमिक कैरियर नहीं होता है, इवन इफ दी एकेडमिशियन इज नॉट अवेयर अबाउट इट, कॉन्शियस अबाउट इट, हर एकेडमिक ट्रीटाइज एक पोलिटिकल ट्रीटाइज होता है। अम्बेडकर ने जो पहला पेपर कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में लिखा था सिस्टम से, उसका बेसिक थीसिस क्या था, उसका बेसिक थीसिस और उसके कुछ समय बाद अनटचेबल्स और द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया जेटो जो लिखा, इन दोनों का एक ही थीसिस था जो ओरिजिन ऑफ कास्ट को एक्सप्लेन करते हैं अम्बेडकर। वो ये बोलते हैं कि ब्राह्मणों ने कास्ट सिस्टम को इम्पोज नहीं किया, कास्ट सिस्टम को वो लागू करने में तब सफल हुए जब वो सोसाइटी को इस बात के लिए परसुएड करने में सफल हुए कि हमारे कस्टम, हमारा सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर सुपीरियर, और इसलिए एक तरीके से ब्राह्मण परसुएडेड द हिंदू सोसाइटी, द इंडियन हिंदू सोसाइटी तो एग्जिस्टेंस आई एक तरह से प्रोसेस में, लेकिन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कहा जाता है, उस सोसाइटी को परसुएड किया और परसुएड करके इस चीज को एक तरीके से कन्विंस कर दिया, हेजोमनी जो रोल था ब्राह्मणिज्म का, कि हमारे कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन सुपीरियर है, विच इंक्लूडेड एंडोगेमी, सजातीय विवाह। और अम्बेडकर ने का जो इन दोनों किताब में पोजिशन है वो ये कि कास्ट सिस्टम का को इंजेंडर करने वाला सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एंडोगेमी, ब्राह्मणों ने एंडोगेमी शुरू की और एंडोगेमी की वजह से कास्ट सिस्टम पैदा हुआ। इस हिस्टोरिकल थियरी की प्रॉब्लम है उसके हम बाद में आएंगे, लेकिन एक चीज समझना बहुत जरूरी है, अम्बेडकर के जो भी एकेडमिक वर्क है वो प्योरली हिस्टोरिकल इंक्वायरी है नहीं, इट्स अ पॉलिटिकल वर्क। अम्बेडकर का उसके पीछे एक एम था, अम्बेडकर का एम क्या था, जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑफ अम्बेडकर है आइडेंटिटी बिल्डिंग, वो आइडेंटिटी बिल्डिंग के पार्ट के तौर पर अम्बेडकर में आप यू कह सकते हैं कि सही इरादों के साथ सही इरादों के साथ, सही इंटेंशन के साथ हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया। कोई हिस्टोरिकल स्टडी आप रेफरेंसेज अगर देखें तो कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या कोई मेजर लिटरेरी न्यूमिस्मेटिक एविडेंस अपने कास्ट के हिस्ट्री के लिए अम्बेडकर नहीं पेश करता है, बहुत ही कम। उनके एकमात्र स्रोत है ब्राह्मण संहिताएं और वेद, जो कि वर्क ऑफ हिस्ट्री नहीं था ना। वेदाज या पुराण या ब्राह्मण संहिता, दे आर नॉट वर्क ऑफ हिस्ट्री और सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी, देवर डॉक्यूमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स, जो कि एक ऑप्रेस्ड पॉपुलेशन को लगातार सिस्टमेटिकली ऑप्रेस्ड बनाए रखने के लिए और उस सिस्टमेटिक ऑपरेशन को जस्टिफाई और लेजिटिमाइज करने के लिए पैदा किया गया। तो उसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं अम्बेडकर, लेकिन दैट डिकंस्ट्रक्शन इज क्या बोलेंगे, इट्स नॉट कंप्लीट, अधूरा है, पार्शियल है। तो इनके जो शुरुआती ये काम थे दो, इसमें इनका पोजीशन ये था कि एंडगनी ने इंट्रा कास्ट मैरिज का जो हुआ आया, इसने कास्ट सिस्टम को एंजेंडर किया, एंडगनी को ब्राह्मण से एंजेंडर किया। अब इस हिस्टोरिकल इंक्वायरी की अपनी प्रॉब्लम है, अगर कास्ट सिस्टम और एंडगनी को ब्राह्मणों ने एंजेंडर किया, ब्राह्मणों ने पैदा किया, तो ब्राह्मणों को किसने पैदा किया, है ना। तब आपको ये मानना पड़ेगा, तब आपको ब्राह्मणों की बात माननी पड़ेगी कि ब्राह्मणों को ब्रह्मा ने पैदा किया। ये करके बगल ये आइडियलिस्ट जो हेगेलियन इंपैक्ट है ह्यूजियन प्रैग्मेटिज्म पे, ये हिस्टोरिकल इंक्वायरी का वो मेथड है जो अंबेडकर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अंबेडकर इसको इग्नोरेंस की वजह से नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये यहां समझना जरूरी है। अंबेडकर एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट और ट्रेंड सोशियोलॉजिस्ट, और उनको पता था कि सोर्स को कैसे हैंडल करना होता है, हिस्टोरिकल सोर्सेज को। लेकिन उनके एकेडमिक प्रीटाइज बेसिकली एक पॉलिटिकल प्रीटाइज है, जिसमें वो सन्स ऑफ सॉइल का जो आइडेंटिटी है ना, कि दलित आर दी ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ लैंड, दे आर दी सन्स ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया, और इसलिए उनकी ये पहचान, दलित और शूद्र जाति की ये पहचान उनको यूनाइट कर ले, क्योंकि उनका मानना था कि कास्ट सिस्टम को खत्म करना दुनिया की और इनइक्वालिटीज को खत्म करने के मुकाबले ज्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि कास्ट सिस्टम एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी देता है, एंड इट्स द डिविजन ऑफ लेबर विच इज हेरिडिटरी, उस तरीके से वो ट्रांसमिट और अपने आप को लगातार रिप्रोड्यूस करता है, और इस वजह से जो दलित जातियां हैं वो भी बची हुई है एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी में। तो अब मान लीजिए कोई हायरार्की पे यहाँ खड़ा है, तो वो अल्टीमेट अथॉरिटी के खिलाफ नहीं लड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे से नीचे भी तो लोग है ना। आप समझ रहे क्या कर रहा हूँ, कि मेरे से नीचे आप कुछ लोगों के रिलेटिव में उसकी भी पोजिशन हेजेमोनिक है और कुछ लोगों के रिलेशन में वो हेजेमोनाइज्ड है, तो इसलिए एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी का सिस्टम है, और इसलिए इस पूरे समुदाय को, जिसको बहुजन समाज अंबेडकर ने कहा, इस पूरे समाज को एक यूनिटरी आइडेंटिटी देने की जरूरत है, वन यूनिटरी आइडेंटिटी। ये यूनिटरी आइडेंटिटी देने का प्रोजेक्ट अंबेडकर का पूरा होता है 1948 में, जब उन्होंने लिखा अनटचेबल्स हू आर देन हाउ दे बिकेम अनटचेबल, व्हाई दे बिकेम अनटचेबल। जब ये किताब आती है, हाँ, मैं ये नहीं जानता कि पहली बार उन्होंने यूज किया या नहीं किया, क्योंकि मैंने अंबेडकर की राइटिंग से ही आता है, उनके पहले किसी ने यूज किया, मतलब मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, मैं कुछ इस पर कहूंगा नहीं, हो सकता है किया, मुझे पता नहीं, लेकिन इस बहुजन समाज की आइडेंटिटी पे सिस्टमेटिकली काम को अम्बेडकर ने किया। तो अनटचेबल्स हू आर दे में उन्होंने बताया कि हर समाज पे अलग अलग समय में किसी न किसी इन्वेडेड ट्राइब ने हमला किया, इन्वेडर्स ने हमला किया, और इन्वेडर्स ने हमला करके जो वहां के ओरिजिनल नेटिव ट्राइब्स हैं उनको इंस्लेव किया है या उनको सब्जुगेट किया है, और ये सब्जुगेशन ही उन नेटिव ट्राइब्स के ऑर्गेनिक ब्रेकअप का कारण बना, जिस वजह से वो ब्रोकन मैन, दलित शब्द वहीं से हुआ था, ब्रोकन मैन का एक मेटाफर देते हैं कि ये ब्रोकन मैन है जो दलित समुदाय आज का है हिंदुस्तान का, और ये जो आर्यन इन्वेजन के बाद उसको सब्जुगेट किया गया उसकी वजह से वो ब्रोकन मैन के तौर पे उभरा, एक दलित ऑप्रेस कम्युनिटी के तौर पे उभरा, और शुरू में उसमें कमेंसल प्रेजुडिसेस नहीं थे। ये अम्बेडकर भी बताते हैं कि शुरू में जैसे खान पान का होता है ना छुआछूत, वो छुआछूत का शुरू में नहीं था, ये बाद में डेवलप होता है। कब डेवलप होता है, शुरू में जब उन्होंने ब्रोकन मैन को सब्जुगेट किया, ब्रोकन मैन को सब्जुगेट किया तो उन्होंने अपने विलेज सेटलमेंट के टेरिटरी पे उनको बताया, आर्यन ब्रह्मनिकल जो एस्टेब्लिशमेंट था उसने, और उनका काम था जो अभी भी अनसबजुगेटेड या अनकॉन्कर्ड नोमैडिक ट्राइब थी उनके हमले से ब्राह्मणिकल सिविलाइजेशन की रक्षा करना। ये मैं एकदम अंबेडकर को कोट कर रहा हूँ जो अंबेडकर ने लिखा है कि ब्रोकन मैन का काम था कि वो विलेज के पेरिफेरी पे रहते थे और तभी से ये जो अपार्थाइड टाइप सेग्रीगेशन पैदा हुआ विलेजेस का कि दलित अलग जगह रहते हैं अलग अलग जातियों के अलग अलग क्वार्टर्स टाइप एक गेटो टाइप रहता है तो उनको पेरिफेरी पे बताया और उनका काम था इन्वेडिंग अनकॉन्कर्ड नोमैडिक नेटिव ट्राइब के हमले से ब्राह्मणिकल सिविलाइजेशन की हिफाजत करना। ये ब्रोकन मैन जब बुद्ध ने 6th century BC में प्रीच करना शुरू किया अपने डॉक्ट्रिन को तो उसके फर्स्ट फॉलोअर्स बने बुद्धिज्म के ये ब्रोकन मैन एंड दे हैव रिमेंड सो टिल द एंड राइट टू द प्रेजेंट डे। और जब ब्राह्मणिकल रिकॉन्क्वेस्ट हुआ जब बुद्धिज्म का एक पॉलिटिकल डिफीट होता है तो उसके बाद भी ये ब्रोकन मैन बुद्धिस्ट बने रहे गौमांस भक्षण करते रहे और इस वजह से ब्राह्मणिकल ने अनटचेबिलिटी को उनके खिलाफ उनके ऊपर इम्पोज किया। ये अनटचेबिलिटी के ओरिजिन का अम्बेडकर का एक्सप्लेनेशन है। अभी हम इसमें नहीं जाते हैं कि वो हिस्टोरिकली करेक्ट है या नहीं हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है। आप आज इस बात के आर्कियोलॉजिकल न्यूमिस्मेटिक लिटरेरी एविडेंस मौजूद है कि अनटचेबिलिटी पैदा कैसे हुई और अनटचेबिलिटी अपने फुल ब्लोन फॉर्म में वो गुप्ता एम्पायर ऑफ फ्यूडलिज्म के इंसेप्शन के साथ आती है। उससे पहले अभी बहुत एम्ब्रियोनिक फॉर्म में वो बुद्धा के टाइम में ही अनटचेबल आउटकास्ट मौजूद थे शुद्धता प्योरिटी पोल्यूशन का प्रिंसिपल आ गया था लेकिन अनटचेबिलिटी एम्ब्रियोनिक फॉर्म में थी। इसके बारे में एक विवेकानंद झा एक हिस्टोरियन है उनका अच्छा काम है अनटचेबिलिटी पे अभी इंटरनेशनली जिस काम को सबसे ज्यादा वैलिड माना जाता है अभी भी रिसर्च जारी है लेकिन अभी फिलहाल ये जिस काम को सबसे अथॉरिटेटिव वर्क माना जाता है वो विवेकानंद झा का है अनटचेबिलिटी पे उन्होंने दिखाया चित्र लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। अम्बेडकर का जो जेल ओमवेस ने लिखा है मैं जेल ओमवेस से अग्री नहीं करता उनके थीसिस से या भारत पटेल के श्रमिक मुक्ति दल के थीसिस से लेकिन जेल ओमवेस ने अम्बेडकर एंड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन में एक बात सही कही है कि अम्बेडकर ने अनटचेबल किताब में कॉलोनियल रेशियल थियरी को निगेट किया रिजेक्ट किया रेशियल थियरी गलत रेशियल एक्सप्लेनेशन कास्ट का नहीं दे सकते आप लेकिन बाद में वो लगभग एक रेशियल एथनिक इंटरप्रिटेशन की तरफ जा रहे थे और अम्बेडकर का एक प्रोजेक्ट अधूरा रह गया उनकी मृत्यु हो गई। उनका एक प्रोजेक्ट था कि कास्ट के ओरिजिन की एक ग्रैंड थियरी पेश की जाए जिस ग्रैंड थियरी का बेसिस ये था कि मच बिफोर मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया देर वॉज अ ब्राह्मणिकल हिंदू कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन जिसके सही इनहेरिटर्स जो है वो ब्रोकन मैन दलित शूद्र और अस्पृश्य जातियां हैं और ये बेसिकली एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन था और इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का वो रेशियल एथनिक वो देते हैं जिसमें वो नए नायकों की भी रचना करते हैं जैसे अशोक को वो नागा सिंह बताते हैं नागा किंग ऑफ एंजेट अशोक नागा नहीं था ये अब हिस्टोरिकली हम जानते हैं लेकिन वो अब कोई कहे कि अम्बेडकर की ये हिस्ट्री गलत है हम कहें यहाँ गलत है लेकिन इसके पीछे अम्बेडकर का प्रिंसिपल इंटेंशन एकेडमिक नहीं था पॉलिटिकल था ये भूलना नहीं था वो उनके कास्ट के एनिहिलेशन का फर्स्ट स्ट्रेटेजी था एक तरीके से कह सकते हैं फर्स्ट स्ट्रेटेजी आइडेंटिटी बिल्डिंग। आप अगर ब्राह्मणिकल हेजेमनी को अपोज करना चाहते हैं उसको रेजिस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइट विद द ग्रेडेड इनइक्वालिटी और ग्रेडेड इनइक्वालिटी से लड़ने के लिए आपको एक सिंगल यूनिटरी आइडेंटिटी चाहिए ताकि आप शूद्र और विभिन्न अस्पृश्य जातियों को एक रैलिंग पॉइंट उनका बना सके और इसलिए अम्बेडकर ये बहस का मसला नहीं होना चाहिए कि अम्बेडकर ने गलत हिस्ट्री इग्नोरेंस की वजह से लिखी या अम्बेडकर ने कॉन्शियसली कंस्ट्रक्ट किया। अब मुझे लगता है कोई भी सीरियस सोशल साइंटिस्ट इंटेंशन पर बहस नहीं करता है कोई भी सीरियस साइंटिस्ट इस चीज की वजह से आज वो उतनी कॉमन प्लेस कॉमन सेंसिकल पेटी बुर्जुआ रैंक होगा जैसे आज बोलते हैं लोग कि कहीं जो भी अन्ना हजारे ईमानदार एक कुटिया में रहते हैं तो भारत के 80% लोग कुटिया में रहते हैं इससे कहते होता है लेकिन अपने आप में वो एक लोटा और एक कुटिया एक लुटिया और एक कुटिया और एक खटिया एक लोग कहते हैं वहां चलता है कि अन्ना अगर एक लुटिया एक कुटिया और एक खटिया में रहते हैं इसलिए वो ईमानदार अपने आप की ये ईमानदारी बेईमानी और मैं इस पर बहस नहीं करूंगा कि अन्ना हजारे बेईमान है कि ईमानदार मैं इससे बहस करूंगा कि अन्ना हजारे की पॉलिटिक्स क्या है और ये क्वेश्चन इमटीरियल होता है सोशल साइंटिस्ट, और हर रेवोल्यूशनरी सोशल साइंटिस्ट होता है, बिना सोशल साइंटिस्ट के कोई रेवोल्यूशनरी नहीं हो सकता, वरना वो सेंटिमेंटलिस्ट रेवोल्यूशनरी होगा। और रेवोल्यूशनरी का नारा होता है डोंट सेंटिमेंटलाइज द पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइज द सेंटिमेंट। तो इसलिए जो पॉलिटिशियन होगा, रेवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन होगा या सोशल साइंटिस्ट, इससे बहस करके अपना मगजमारी करने का कोई पॉइंट नहीं है कि कौन ईमानदार था, कोई कैसे करो दिल चीर के उसका देख नहीं सकते आप। तो हनुमान जी की तरह दिल चीर के दिखाए कि मेरे दिल में सीता और राम बसते हैं, वैसी बेवकूफी बड़ी बात होगी। तो इसलिए बेसिक बात इस पे होगी। और अम्बेडकर का जो एकेडमिक क्रिटाइज है उसको भी इसी तरीके से आपको स्टडी करना पड़ेगा कि अम्बेडकर का दैट वॉज वन ऑफ द पोलिटिकल स्ट्रेटेजीज ऑफ अम्बेडकर। नंबर वन जो दूसरा मेजर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी था अम्बेडकर का, उसको आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देख सकते हैं कि अम्बेडकर की स्ट्रेटजी अलग अलग टाइम पे कैसे बदलती है और क्यों बदलती है ना। जो शिफ्ट होता है, आप शिफ्ट एक्सप्लेन करेंगे तभी आप सोशल साइंस होता है, आप पैराडाइम शिफ्ट होता है उनके पॉलिटिकल प्रोग्राम में, बार बार होता है इनफैक्ट, लेकिन वो पैराडाइम शिफ्ट क्यों हो रहा है ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। और आप एक्सप्लेन तब नहीं कर पाएंगे जब आपको फिलोसॉफिकल ओरिजिन ना बताओ। अब जबकि हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन कर चुके हैं कि अम्बेडकर की फिलोसफी कहाँ से आ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अम्बेडकर ने कब क्यों क्या किया। इसको मतलब रिलेटिवली इजी है उसको एक्सप्लेन करना या इंटरप्रेट करना। ओपनली पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत अम्बेडकर की वो साउथ बरो कमेटी जो थी 1919 में आई थी, जिसका काम था भारत में इलेक्टोरल फ्रेंचाइज को डिफाइन करना। वो आई थी और वो बेसिकली मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स का एक प्रिकर्सर था एक तरीके से। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के लिए कोई रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को ही उन्हें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी साउथ बोरो कमीशन को। साउथ बोरो कमीशन के सामने बहुत सारे जो दलित लीडर्स थे उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ। अम्बेडकर किसी दलित ग्रुप या किसी एसोसिएशन की तरफ से नहीं गए थे, वो एक एकेडमिक के तौर पर गए थे क्योंकि वो एकमात्र ग्रेजुएट थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, दलित ग्रेजुएट थे और इस तौर से उनको बुलाया गया टेस्टिमनी के लिए। वहां पे अम्बेडकर का बेसिक प्रिमाइज यह था कि हिंदू सोसाइटी का जो क्लीवेज है वो ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के बीच देखना गलत है। हिंदू सोसाइटी का जो बेसिक क्लीवेज है वो टचेबल्स एंड अनटचेबल्स के बीच, और अनटचेबल्स अपने आप में एक सेपरेट पॉलिटिकल एनक्लेव को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक सेपरेट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। और इस वजह से साउथ बोरो कमेटी के सामने अम्बेडकर ने कहा हमें दो चीजों में से एक चीज दो, या रिजर्व सीट्स या सेपरेट इलेक्टोरेट। तब तक अम्बेडकर के लिए दोनों ऑप्शन खुले हुए थे, आप उनके उनकी टेस्टिमनी भी मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। अम्बेडकर का जो कलेक्टिव वर्क छपा है उसमें वो पूरी टेस्टिमनी है साउथ बोरो कमीशन के सामने जो अम्बेडकर ने दी। उसके बाद जो दूसरा मेजर माइलस्टोन आता है जहां पे अम्बेडकर की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में आप एक शिफ्ट देख सकते हैं, वो आता है साइमन कमीशन के सामने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो कि उन्होंने 1923 का इसके आसपास मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं आ रहा अभी गठित की थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा बेसिकली एक आइडेंटिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था जो अम्बेडकर ने एक पर्टिकुलर सोशल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया था। उसकी तरफ से उन्होंने एक प्रपोजल सबमिट किया साइमन कमीशन के सामने, उसमें उन्होंने दो चीजें कही। एक उन्होंने ये कहा कि या तो हमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के साथ, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज फॉर दलित, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज फॉर दलित प्लस रिजर्व सीट दो या सेपरेट इलेक्टोरेट दो। तो एक आपको इजाफा दिखता है यहां पर कि अम्बेडकर अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम में एक प्रपोजल जोड़ रहे हैं। अब मुझे नहीं कह रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट या रिजर्व सीट, क्योंकि बहिष्कृत हितकारिणी सभा अगर रिजर्व सीट मानती तो अम्बेडकर जिस यूनिटरी दलित आइडेंटिटी के क्रिएशन के लिए काम कर रहे थे वो हो नहीं पाता। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि रिजर्व सीट पे वोटिंग राइट सबको होता और कोई भी पार्टी अपना दलित कैंडिडेट खड़ा कर सकती थी। तो कोई भी पार्टी यदि अपना दलित कैंडिडेट खड़ा करती तो जो दलित कैंडिडेट जीतता उसकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ दलित के प्रति नहीं होती, ओवरऑल पॉपुलेशन के प्रति होती। मैं पर्सनली एग्री नहीं करता हूँ कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड सही थी, अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी अम्बेडकर के प्रोग्राम को अम्बेडकर की शर्तों पर चले देखते हैं, क्रिटिक पे बाद में। तो अम्बेडकर उस समय कहते हैं कि रिजर्व सीट विद यूनिवर्सल फ्रेंचाइज फॉर दलित और सेपरेट इलेक्टोरेट दोनों में से कोई एक चीज हमें दीजिए। साइमन कमीशन बोलता है कि इसमें हम रिजर्व सीट देंगे लेकिन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं देंगे। और साथ में साइमन कमीशन ये भी बोलता है कि जो दलित कैंडिडेट लड़ेगा उसको अपना इलेक्टोरल कॉम्पिटेंस पहले प्रोविंस के गवर्नर से अटेस्ट कराना पड़ेगा। समझे बात? मतलब मान लीजिए मैं दलित कैंडिडेट हूँ और मैं यहाँ से खड़ा होना चाहता हूँ तो, और मैंने मेरी पार्टी है मान लीजिए, और मैंने किसी को मान लीजिए आपको मैंने कहा कि आप खड़े होंगे, तो आपको पहले गवर्नर के पास जाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आपका प्रॉपर्टी होल्डिंग कितना है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आप सिस्टम के खिलाफ सबवर्सिव एक्टिविटी में तो कभी नहीं थे, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा, साइमन कमीशन ने जिस चीज पे राजी हुआ ये था कि हम रिजर्व सीट देंगे लेकिन रिजर्व सीट पे जो भी दलित कैंडिडेट खड़ा होगा वो जो प्रोविंशियल गवर्नर होगा उससे वो अपना कॉम्पिटेंस का सर्टिफिकेट ले जाएगा, वो सर्टिफाई करेगा उसके कॉम्पिटेंस को। तो अम्बेडकर से नाराज हुए लेकिन अम्बेडकर कोई कन्फ्रंटेशनल स्टैंड उन्होंने नहीं लिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसके बाद लेकिन जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी उससे कोई रजामंदी बनी नहीं, जैसा कि आप लोग जानते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि कांग्रेस उसके फ्रेमिंग का पार्ट नहीं थी और इस वजह से उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए 1930 और 1931 में लंदन में दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज से भी बहुत लोग ये सोचते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट पे कंसेंसस बन गई, ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं बन पाया था कंसेंसस। फिर 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधे ब्रिटिश रॉयल डीट इन लंदन उसने इंटरवीन करके सेपरेट इलेक्टोरेट देने की 71 सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात मान ली। लेकिन गांधी ने अपने स्टैंड पॉइंट से, जो कि एक रिएक्शनरी रिग्रेसिव स्टैंड पॉइंट था, कि अगर दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है तो हिंदू सोसाइटी का जो फैब्रिक है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, इस वजह से गांधी इससे जेल में बंद थे उस समय पूना में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर उन्होंने पाप शुरू कर दिया अपना। बहुत लोग कहते हैं कि अम्बेडकर इस वजह से गांधी के सामने उस पाप के बाद झुक गए क्योंकि उसकी वजह से हिंदू रिएक्शन होने की संभावना थी। लेकिन क्रिस्टोफ जेफरलॉट और इस तरह के बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट जो कि अम्बेडकर के प्रति सिंपैथेटिक हैं, उन्होंने बताया कि अम्बेडकर इसलिए नहीं माने, अम्बेडकर इसलिए माने कि आइरोनिकली इनफ उस समय अम्बेडकर से ज्यादा दलित कांग्रेस के पास खड़े थे। ये कारण ये था कि अम्बेडकर की एक ये छवि बन गई थी कि ये ब्रिटिश के साथ कोलैबोरेटर है, और इस वजह से दलित लैंडलेस आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो कि अंग्रेजों से नफरत करता था क्योंकि पूरा जमींदारी सिस्टम तो उन्हीं का बनाया हुआ था और वो जो लगान की पूरी व्यवस्था थी वो तो कॉलोनियल स्टेट चलाता था ना, कॉलोनियल स्टेट ही उसको डायरेक्ट करता था। और ये भी फैक्ट है कि अम्बेडकर ने कोई बड़ा स्ट्रगल या कोई बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट लैंड के क्वेश्चन पे कभी, लैंडलेस लेबर के क्वेश्चन पे कुछ छोटा मोटा खोटी सिस्टम को लेकर बात की थी ये सब था, लेकिन कोई लैंडलेस लेबर का मूवमेंट अम्बेडकर ने कभी नहीं ऑर्गेनाइज किया था। आप शुरू से अम्बेडकर के पॉलिटिकल करियर को देख सकते हैं, उसका मायने इसलिए नहीं कि अम्बेडकर डिसऑनेस्ट थे या वो ब्रिटिशर्स और रूलिंग क्लास को प्यार था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसे इंटरप्रेट किया है कि अम्बेडकर अपॉर्चुनिस्ट थे। लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अम्बेडकर ने कभी किसी पद की या पावर की क्विड प्रो को में ये नहीं किया था, लेन देन करके नहीं किया था, इसलिए अम्बेडकर डिसऑनेस्ट या अपॉर्चुनिस्ट नहीं थे। वो क्यों कभी लैंडलेस लेबर का कोई रेडिकल मूवमेंट उन्होंने नहीं खड़ा किया, या महाड़ सत्याग्रह भी एक कॉम्प्रोमाइज में खत्म हुआ अंततः, जो उसका कारण था हम उससे आएंगे बाद में कि अम्बेडकर क्यों उससे हो, क्योंकि उनका फर्म बिलीफ था कि फ्रॉम बिलो कोई रेडिकल सोशल मूवमेंट अगर सोशल चेंज के लिए वो करेगा तो इट वुड बी वेस्टफुल, इट वुड क्रिएट चेओस एंड एनार्की, और इसलिए जो भी चेंज लाना है वो स्टेट ऊपर से एंजेंडर करेगा। तो वो तो उसी प्रैग्मेटिक प्रेजुडिस से आ रहा था, इसलिए अम्बेडकर की इससे बात करने के लिए ये रिडिकुलस है कि मतलब आप ऑनेस्टी या उसकी बात करें, क्योंकि अम्बेडकर ने कभी किसी पद की चाहत में कोई भी कदम नहीं उठाया था, ये उनके पॉलिटिकल कैरियर में आप देख सकते हैं। और वो इन्विटेशन पे गए थे सारे वायसराय के काउंसिल में, कांग्रेस के द्वारा जब उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया या फिर उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया, माइनॉरिटी कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका मेंबर बनाया, या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, अम्बेडकर ने लिखा था ये मुझे दो, है ना, अम्बेडकर को बनाया। ये बात अलग है कि कांग्रेस उसमें कितना बड़ा गेम खेल रही थी वो बात की बात है, लेकिन अम्बेडकर अपने क्विड प्रो क्वो के लिए नहीं बैठे कि हम तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें ये दूंगा, टाइप वाला मामला नहीं था। और ये जो बोलता है वो एकदम फैक्ट के साथ बदतमीजी कर रहा है, ये एकदम गलत तरीका है सोशल एनालिसिस बहरा। तो अम्बेडकर के गांधी के सामने पूना पैक जो हुआ झुकने का प्रिंसिपल रीजन ये था कि दलित का भी बड़ा हिस्सा वो अम्बेडकर के साथ नहीं था, ये फैक्ट है। आप उस समय वैश्विक हितकारिणी सभा के मेंबरशिप देखिए और आप दलित मेंबरशिप जो उस समय कांग्रेस की थी और सबसे ज्यादा जो कम्युनिस्ट पार्टी की थी वो देखिए, बहुत बड़ा गैप है। तो अम्बेडकर नेशनल लेवल पे सिम्बोलिकली दलित के लीडर बन गए थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनली नहीं बने थे, ऑर्गेनाइजेशनली पॉलिटिकली नहीं बने थे, सिम्बोलिकली बने थे। तो इसलिए अम्बेडकर के सामने और कोई चारा नहीं था, वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। और गांधी ने ये कहा कि हम भाई आपको 71 सेपरेट इलेक्टोरेट के बजाय 148 रिजर्व सीट देंगे, और वो रिजर्व सीट उन कॉन्स्टिट्यूएंसी में देंगे जहाँ पे दलित पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ताकि उनका स्टे उसमें रहे और अकाउंटेबिलिटी जो चुना जाए वो दलित के प्रति रहे उसकी। बहरहाल इसके बाद अम्बेडकर के इस पूना पैक्ट एक वॉटरशेड, तो अम्बेडकर की पूरे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में अगर आपको एक जैसे वो देखना चाहें कि इधर अलग था और इधर अलग था, तो पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के बाद ये क्लियर था अम्बेडकर के सामने कि एक दलित लीडर के तौर पे आप रिजर्व सीट के फ्रेंचाइज सिस्टम के लागू होने के बाद आप एक दलित लीडर के तौर पे सक्सीड नहीं कर सकते। यू हैव टू रिकॉन्स्टिट्यूट एंड रीबिल्ड योर सेल्फ एज अ लीडर ऑफ द मासेस इन जनरल पुअर वन। और इसीलिए 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वो बनाते हैं। ये कहना बहुत लोगों का जो आजकल अंबेडकर के पॉलिटिकल थॉट और मार्क्सिज्म का मिक्सचर कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, नहीं हो नहीं सकता, मतलब दोनों ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों के आइडियोलॉजिकल जो पॉइंट ऑफ डिपार्चर पॉइंट है वो अलग है, इसलिए वो ऐसे सारे प्रयास करने वाले दोनों तरफ से गाली खाते हैं। जैसे कि चंडीगढ़ सेमिनार हुआ, वहां आनंद आए थे, आनंद तेलतुंबड़े, वहां बहस हुई है, तो उन्होंने बहस में आते आते वो इस चीज पे आ गए कि हाँ अम्बेडकर के सारे एक्सपेरिमेंट ग्रैंड फेल्योर में खत्म हुए, इसी बात को मान गए। फिर यहाँ आए तो जबरदस्त उनके खिलाफ अब्यूसिव लैंग्वेज में और खराब लैंग्वेज में उनके खिलाफ गाली गलौज करते हुए लिखा गया यहाँ के अखबारों में। तो मतलब ये होता है कि आप अगर दो स्टूल पे एक साथ बैठने की कोशिश करेंगे तो आप उसके बीच में धड़ाम से गिर जाएंगे, यही होता है। इसलिए दो स्टूल आइडियोलॉजी के क्वेश्चन है, टैक्टिक्स में कुछ साथ करें वो दूसरी चीज है, लेकिन टैक्टिक्स के क्वेश्चन को आइडियोलॉजी का क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए और आइडियोलॉजी के क्वेश्चन को टैक्टिक्स का क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए। और आइडियोलॉजी के मामले में अगर आप दो स्टूल से एक साथ बैठने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है आप बीच में गिरेंगे। और यही इस तरह के तमाम लेफ्ट अम्बेडकराइट लेफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा के साथ होता है, क्योंकि इस तरह का कोई ब्रिज अम्बेडकर के पोलिटिकल फिलोसफी और मार्क्सिज्म में बन नहीं सकता एक्सेप्ट वन, कि दोनों का जेन्युइन कंसर्न है कि कास्ट एनिहिलेट होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि बहस की जा सकती है बाद में कि कोई किसी साथी को लगता है कि कोई ब्रिज हो सकता है तो वो एलाबोरेट करेगा इसको। तो आईएलपी 1936 में बनाने का पीछे का बेसिक था इलेक्टोरल स्ट्रेटजी, और अम्बेडकर का उसमें कोई आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं था कि वो पहले मतलब वो लेफ्ट की तरफ नहीं थे, फिर उनका लेफ्ट की तरफ झुकाव हो गया इसलिए उन्होंने आईएलपी बनाया, तो ये गलत बात है। और अम्बेडकर होते तो इससे बहुत आपत्ति करते, और अगर अम्बेडकर जीवित होते तो इससे सख्ती से आपत्ति करते। तो मार्क्सिज्म को उन्होंने फिलोसफी ऑफ स्वाइन फिलोसफी बोला था, और अंत तक तो इस पर अडिक्ट है मार्क्सिज्म का, हालांकि उन्होंने कुछ ओरिजिनल पढ़ा नहीं था, लेकिन मार्क्सिज्म जो ड्यूरियन प्रैग्मेटिज्म की एक एनिमोसिटी है मार्क्सिज्म के प्रति, उनको उसको इनहेरिट किया था फिलोसॉफिकली अम्बेडकर ने, उसमें अम्बेडकर की गलती नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है एंड वी शुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड, जैसे को तैसा बोलना चाहिए। तो उसका जो आईएलपी का प्रोग्राम था जिससे हमने शुरू में बात की, वो इकोनॉमिक प्रोग्राम बेसिकली वेलफेयर स्टेट का प्रोग्राम था, वेलफेयरिस्ट कैपिटलिज्म का प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने लिखा कि भाई, और उसमें दलित की अलग से वो लेबरर्स के तौर पे दलित की चर्चा करते हैं। दलित आइडेंटिटी आप अभी भी मौजूद है ऑनलाइन पूरा प्रोग्राम, अगर आप आईएलपी का पढ़े तो दलित आइडेंटिटी को इंटरसाइज नहीं कर रहा है कहीं भी, नॉट इन अ सिंगल प्लेस, वो पूरी तरीके से दलित एज अ पार्ट ऑफ द लेबरिंग मासेस ऑफ इंडिया इसके तौर पर बात कर रहे हैं। और उसके बारे में अम्बेडकर ने सही बात कही कि इंडिया का वर्किंग क्लास वो भांडवलशाही और ब्राह्मणशाही का दोनों का विक्टिम है, और इसलिए एक ऐसा इकोनॉमिक प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें कि सारी की इंडस्ट्रीज और बेसिक इंडस्ट्रीज, दो इंडस्ट्रीज की उन्होंने बात की इंडस्ट्रीज और बेसिक इंडस्ट्रीज वो स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उससे, क्योंकि क्योंकि और अम्बेडकर का मानना था कि अगर विलेज का ओल्ड हिंदू ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर टूटेगा तो उससे काफी हद तक वीकेंड होगी। तो इसलिए आईएलसी के प्रोग्राम में उन्होंने एक इकोनॉमिक प्रोग्राम जो केडियन वेलफेयर प्रोग्राम रखा कि स्टेटाइजेशन होना चाहिए, स्टेट कैपिटलिज्म बेसिकली। और वो बोलते वो उसको स्टेट सोशलिज्म बोलते थे, हालांकि स्टेट सोशलिज्म एक मिसनोमर है, स्टेट सोशलिज्म कुछ नहीं होता है, लेकिन वो हर स्टेट सोशलिज्म अल्टीमेटली स्टेट कैपिटलिज्म बनेगा। वो स्टेट कैपिटलिज्म का एक प्रोग्राम देते थे, लेकिन उसमें भी लैंड प्रोग्राम में जैसे वो ये मानते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी की सैंक्टिटी को हमेशा मानते थे अम्बेडकर, और इसलिए आर्टिकल 2 जो था कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें अम्बेडकर ने साफ तौर पर लिखा है कि स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर विद इंडिविजुअल राइट टू इनहेरिट सेल और बाय प्रॉपर्टी। ये अम्बेडकर का इंसर्शन था। और इसके साथ आप ये भी बोलेंगे कि आप सारे इंडस्ट्री और लैंड को नेशनलाइज कर दो। अब अगर आप ये मानते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की सैंक्टिटी और उसका उसको लेजिटिमेट मानते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को, और साथ में आप ये बोलते हैं कि स्टेट के कंट्रोल में कर देना चाहिए नेशनल, से एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है। उस कॉन्ट्रडिक्शन को अम्बेडकर कैसे रिजॉल्व करते हैं? वो बोलते हैं कि जमीनें जो छीनी जाएंगी जमींदारों से उसके बदले, और इंडस्ट्रीज से जो फैक्ट्री छीनी जाएगी उसके बदले उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड, और राज्य रजवाड़ों से जो उनकी रियासतें छीनी जाएगी उसके बदले में उन्हें प्रिवी पर्स किया जाएगा। ये प्रपोजल अम्बेडकर का था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और ऐसे में लैंड रिलेशंस वाकई तो नहीं बदलेंगे ना, जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए मैं जमींदार हूँ, ठीक है, और मैं डायरेक्टली पेजेंट से लगान वसूली करता हूँ, लैंड का स्टेट नेशनलाइजेशन कर देता है, लेकिन उस लैंड के आधार पर मेरे को गवर्नमेंट बॉन्ड देता है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड से जो मुझे डिविडेंड मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? रेवेन्यू से मिलेगा ना, जो लैंड से रेवेन्यू अक्रू हो रहा है, तो लैंड रेंट वहीं से आएगा गवर्नमेंट बॉन्ड का जो डिविडेंड है। तो गवर्नमेंट अगर आप प्रॉपर्टी कंफिस्केट कर रहे हो तो ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जितना भी रेडिकल इकोनॉमिक प्रोग्राम है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको पता ही है कि जमींदारों और चर्च प्रॉपर्टी विदाउट कॉम्पनसेशन कंफिस्केट किया स्टेट ने, और ये तो सोशलिस्ट प्रोग्राम नहीं है, तो रेडिकल बुर्जुआ प्रोग्राम नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड लैंड और उसके विदाउट कॉम्पनसेशन। लेकिन अम्बेडकर ने खुद कहा कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो उनकी थी, और अब अगर हम बेटर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए नेशनलाइज कर रहे हैं तो वी शुड कॉम्पनसेट देम, और उसके बदले में हमें गवर्नमेंट बॉन्ड देने चाहिए। और अम्बेडकर इस प्रोग्राम पे टिके हुए थे। ये प्रोग्राम बल्कि और कंजर्वेटिव बना जब 1952 में अम्बेडकर ने कहा कि की इंडस्ट्रीज में भी सभी को नेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, कुछ को नेशनलाइज करना चाहिए कुछ को नहीं करना चाहिए। तो अम्बेडकर का इकोनॉमिक प्रोग्राम एक कंजर्वेटिव लेबर पार्टी प्रोग्राम था, दैट्स ऑल, एट मोस्ट, इससे आगे नहीं जाता। आप पूरे अम्बेडकर की राइटिंग पढ़ लीजिए, राइट फ्रॉम द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कलेक्टेड वर्क टू द लास्ट वॉल्यूम। ये इकोनॉमिक प्रोग्राम एक कंजर्वेटिव लिबरल प्रोग्राम था, एक ऐसा कंजर्वेटिव लिबरल प्रोग्राम जिससे आगे फ्रेंच रेवोल्यूशन ही जा चुका था और अमेरिकन रेवोल्यूशन ही जा चुका था। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन अम्बेडकर के लिए लीडिंग लाइट्स थे फिलोसॉफिकली। टॉम पेन को बहुत प्रशंसा करते हैं अम्बेडकर, जेफरसन की बहुत प्रशंसा करते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन थे और पैराडॉक्सेस थे, क्योंकि अम्बेडकर को उस फिलॉसफी को, वही हर फिलॉसफी सिर्फ पीछे की फिलॉसफी से लेती नहीं है, बल्कि वो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से जिस क्लास या जिस सोशल ग्रुप, अगर किसी को मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी से एलर्जी है तो जिस सोशल स्ट्राटा को वो सर्व कर, उस सोशल स्ट्रैटम को सर्व करने के लिए वो पुराने फिलॉसफी से एक रिडेम्पटिव लर्निंग करती है। रिडेम्पटिव लर्निंग का मतलब हूबहू उठा नहीं लेना, रिडीम करना उसको अपने देश के कंडीशन के हिसाब से या अपनी सोसाइटी के कंडीशन के हिसाब से जैसा कि आपको लगता है, और आईएलपी के प्रोग्राम में उन्होंने वही किया। लेकिन उसी समय एक और भी कंट्रडिक्शन आईएलपी के प्रोग्राम में आया। अम्बेडकर अपने उसी समय के स्पीचेस में बोलते हैं कि इंडियन सोसाइटी का प्रिंसिपल फीचर कास्ट हायरार्की है, एंड कास्ट हैज नथिंग टू डू विद एक्सेस ऑफ एनी पर्टिकुलर कास्ट टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर आप लेबरर्स के एक्सप्लॉयटेशन खत्म करने की अपने पार्टी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, और आप अपने अलग से जो आपके राइटिंग्स और स्पीचेज हैं उसमें आप कह रहे हैं कि कास्ट क्लास एनालिसिस इट्स नॉट अ यूजफुल कैटेगरी फॉर इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के एनालिसिस के लिए क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है, कास्ट इम्पोर्टेंट है और कास्ट का इकोनॉमिक रिसोर्सेज में शेयर से कोई रिश्ता नहीं। ये अम्बेडकर का स्टैंड पॉइंट है, मैं कोट कर रहा हूँ, लगभग लगभग एक दो शब्द इधर है, बाकी मैं कोट कर रहा हूँ अम्बेडकर। और इस रूप में ये कहने वाले कि कास्ट इकोनॉमिक बेस का पार्ट नहीं है, कास्ट सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल, कम्युनिस्ट लोग पहले नहीं थे, अम्बेडकर पहले रहते थे। तो प्रॉब्लम था उसमें, एक कॉन्ट्रडिक्शन आईएलपी के प्रोग्राम और अंबेडकर के खुद के थॉट में था, क्योंकि आईएलपी का प्रोग्राम इसको जस्ट एन इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी, दैट्स ऑल, ये अंबेडकर की बिलीफ को रिप्रेजेंट नहीं करता आईएलपी का प्रोग्राम। अगर कोई आईएलपी का प्रोग्राम पढ़कर फैसला करे कि अंबेडकर का आइडियोलॉजी क्या है, तो आई जस्ट वुड बी मिसलेड, वो बहुत उल्टे पुलटे नतीजों को पहुंच जाएगा। तो इस इन्हीं कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से 1937 में जो इलेक्शन हुए, प्रोविंशियल इलेक्शन, उसमें आईएलपी का बुरी तरह से हारी। और उसमें दो तीन चीजें और भी गौर करने वाली है जिसपे मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये फैक्ट है कि जो 148 कैंडिडेट थे आईएलपी के, उसमें से 146 कैंडिडेट महार थे, एक मंग था और एक गुजरात का एक अंटचल था। तो ये भी अंबेडकर की अपील के लिमिटेशंस को दिखाता है। और यही कारण था जब कन्वर्जन हुआ तो अपार्ट फ्रॉम महार बुद्धिज्म में कन्वर्जन हुए, लेकिन बहुत फिनोमिनल कन्वर्जन नहीं हुआ बुद्धिज्म में। और उसका कॉन्ट्रडिक्शन रिजर्वेशन की पॉलिसी से हो गया, क्योंकि बहुत लोग बुद्धिज्म में इसलिए नहीं कन्वर्ट हो रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि रिलीजियस आइडेंटिटी बदलते रिजर्वेशन के जो बेनिफिट थे वो हमें नहीं मिले। इनफैक्ट चम्हार जो थे उन्होंने एक्टिवली प्रोपेगेंडा किया अम्बेडकर के खिलाफ, वन ऑफ दी अनटचेबल का, उसी दौरान 1937-38 की बात कर रहा हूँ। तो 37 में जब मतलब आईएलपी का एक्सपेरिमेंट फेल करता है, तो अंबेडकर एक तरीके से वापस अपने एक दलित लीडर वाले आइडेंटिटी पे वापस जाते हैं, और 1942 में जो है वो एससी फेडरेशन के तौर पे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तौर पे वो एक अलग एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं। और जो एससी फेडरेशन का जो पूरा प्रोजेक्ट था उसमें अंबेडकर इलेक्टोरल जो सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ कुछ एक चीजें जोड़ते हैं, वो बहुत अहम चीज है, गौर करने वाली चीज है, क्योंकि आप बिटवीन द लाइन की पढ़ेंगे तो गड़बड़ नतीजे पर पहुंच सकते हैं, अंबेडकर के बारे में आप प्रेजुडिस हो सकते हैं। अंबेडकर ने 1944 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से एक प्रपोजल क्रिप्स मिशन उस समय हुआ था, क्रिप्स मिशन के सामने रखा, और उस प्रपोजल में उन्होंने कहा कि हमें तीन चीजें चाहिए, एक सेपरेट इलेक्टोरेट, पहला सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड, दूसरा था रिप्रेजेंटेशन इन दी एग्जीक्यूटिव, यानी कि ब्यूरोक्रेसी और जो एग्जीक्यूटिव के अदर पार्ट है उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए कि दलित का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उसमें, जो कि उस समय एकदम एक सही डिमांड थी, एक करेक्ट डिमांड थी। तीसरा जो डिमांड था वो बहुत वियर्ड था, तीसरा डिमांड ये था कि दलित विलेजेस बनाए जाए और दलित विलेजेस के लिए टोल टैक्स रखा जाए, अगर कोई दलित विलेजेस में बाहर से आता है तो टोल टैक्स, काइंड ऑफ अ कंट्री विद इन कंट्री, मतलब कि अब क्योंकि ये अब पता लग रहा था कि भारत आजाद तो होगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कब ब्रिटिशर्स जाते हैं, तो उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को लिखा भी, बेवरली निकोलस, बड़ा ऑफिसर था, मतलब वाइस रीजल, उसने काफी इसकी पूछ की, उसको लिखा भी, उससे बात भी की, उन्होंने कहा कि अंग्रेज जाने से पहले सभी गांव के दलितों को लार्ज स्केल इनका एग्जोडस कराएं, माइग्रेशन कराएं, अगर उसमें फोर्स भी अप्लाई करनी पड़ती है तो फोर्स भी अप्लाई करें, लेकिन चूंकि हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित माइनॉरिटी है इसलिए आई वॉन्ट टू मेक अ मेजोरिटी ऑफ दलित टेरिटोरियली, मतलब पूरे देश में तो नहीं बनता लेकिन टेरिटोरियली मैं बनाना चाहता हूं, और अगर ब्रिटिशर्स अलाउ करें, और उनका एग्जैक्ट कोट है, अगर डिस्कशन में आता है तो मैं कोट दे दूंगा, जो एक लेटर था उससे है वो, कि अगर ब्रिटिशर्स अलाउ करें तो हम ऐसा लार्ज स्केल माइग्रेशन करके दलित विलेजेस इन्वेंट कर सकते हैं जहां पर हमें टोल टैक्स लगाएंगे अगर बाहर से दलित विलेज में कोई आएगा, तो सभी जानते हैं इम्प्रैक्टिकल, तो दलित नहीं जाएंगे, जैसे जिस जगह वो रहते हैं वो छोड़ के क्यों जाएंगे, वो तो वैसे ही डिस्पोजेस्ड है, और थोड़ा सा सोशल कॉमन्स जो उनकी वो है, तो डर से कि ये भी कहीं हाथ से ना चला जाए, वो ऐसा कि लार्ज स्केल माइग्रेशन आप 18 करोड़ लोग का कैसे करेंगे, मतलब अगर उस तरीके से अलग अलग कैलकुलेशन है, लेकिन अगर मान लीजिए 14-16% जो अभी बाद में कुछ डेटा है उसमें 17% बोला है, आज के दौर में अगर मैं बात कर रहा हूँ, आज के दौर में करना पड़े तो आप 18 करोड़ लोगों का ऐसा माइग्रेशन कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं। तो मतलब इस समय तक अंबेडकर में वो एक डेस्परेशन भी आ रहा था, क्योंकि जैसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट फेल किए, जैसे बहिष्कृत चित्कारिणी सभा का, आईएलपी का, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड का, तो उसकी वजह से एक डेस्परेशन भी आ रहा था कहीं ना कहीं, और ये डेस्परेशन और बढ़ा जब एसटीएफ जो था वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1945-46 का जो लास्ट ब्रिटिशर्स के अंतर्गत इलेक्शन हुआ था उसमें एससीएफ हार गया। दो सीट वो जीता प्रोविंशियल, एक बंगाल से और एक सेंट्रल प्रोविंसेस इन बिरार से, और दो लोकसभा सीट जीता, एक हैदराबाद से और एक बॉम्बे प्रोविंस से। बॉम्बे प्रोविंस में अम्बेडकर खुद हार गए इलेक्शन, लेकिन मतलब दो सीट कुल मिला के वहां से जीता। और एससीएफ का कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था, इस पे क्रिस्टोफ जेफरलॉट का एक काम है, स्ट्रेटजीज ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो उसमें उन्होंने दिखाया है उसको, वो डेटा दिया है कि एससीएफ का कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था और ज्यादा काम अम्बेडकर एक तरीके से सिंगल हैंडेडली करते थे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का काम, कैडर बेस कोई बड़ा नहीं था, और इस वजह से सारे सीट से एससीएफ अपने कैंडिडेट तक नहीं खड़ा कर पाया, क्योंकि उन्हें कैंडिडेट तक सारे सीट पर खड़े करने के लिए। बहरहाल एससीएफ की डिफीट के बाद एक तरीके से साल भर के लिए अम्बेडकर साइड लाइन हो गए थे एकदम पॉलिटिक्स में, जो अम्बेडकर ने खुद ही धनंजय कीर से कहा भी था कि मैं इंडियन पॉलिटिक्स से पूरी तरह साइड लाइन हो चुका हूँ, मेरी अभी कोई सुनेगा नहीं। और उसके बाद अम्बेडकर को एक तरीके से वापस मेन स्ट्रीम में कांग्रेस लाती है। हालांकि अम्बेडकर ने गायकवाड़ को पत्र में लिखा था कि कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट वाला व्यक्ति कभी भी कांग्रेस के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकता है, ये अम्बेडकर के शब्द कि कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट वाला व्यक्ति कभी भी कांग्रेस के साथ कोलैबोरेट नहीं करता, लेकिन अम्बेडकर उस समय गए। अब इसको भी कोई इनकंसिस्टेंट प्रैग्मेटिक फिलोसफी आप समझेंगे तो समझ जाएंगे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग रियली। तो अम्बेडकर उसके बाद गए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उनका पूरा भाषण ऑनलाइन मौजूद है, उसको आप पढ़िए, कांग्रेस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मतलब उनके भाषण का लगभग 40-50% हिस्सा वो थैंक्स गिविंग है कांग्रेस को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो अम्बेडकर का स्पीचेस है, आप वो स्पीचेस पढ़िए, वो मौजूद है सारी की सारी। तो अम्बेडकर का ये शिफ्ट अगर आप देखें कांग्रेस को लेकर, ये क्यों होता है, इनफैक्ट एक चीज छूट गई, ब्रिटिश के बारे में भी उनका 1930 तक कभी भी ब्रिटिशर के साथ डायरेक्टली कोलैबोरेट अम्बेडकर ने नहीं किया था। और इनफैक्ट अम्बेडकर ने सेनून के एक काम लिखा है, राइट टू दिस स्टेट इट्स वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी ऑन सेनून इन इंडिया, उन्होंने सेनून अंडर ब्रिटिश रूल, बहुत प्रसिद्ध किताब है अम्बेडकर की। तो उसमें उन्होंने बताया कि मिड 19th सेंचुरी से अर्ली 20th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स की नीतियों की वजह से मैन मेड सेनून पैदा किए गए, जिसमें 2.5 करोड़ लोग सारे सेनून में मिला थे। लेकिन अम्बेडकर का यह मानना था साथ में कि कुछ एनलाइटेनमेंट इगैलिटेरियन वैल्यूज वगैरह वो ब्रिटिशर्स के साथ शेयर करते थे, जैसे एजुकेशन सिस्टम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसे आप लोगों ने इल्बिट बिल कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में आप लोगों को पता होगा, ये इक्वालिटी कि व्हाइट ब्राउन जजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या ब्राउन जजेस जो है वो व्हाइट को ट्राई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इल्बिट बिल कौन से लेट 19th सेंचुरी। तो उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स के साथ कुछ इगैलिटेरियन वैल्यू भी शेयर करते थे, वेस्टर्न एनलाइटेनमेंट की जो वैल्यू थी, लेकिन वो ये भी मानते थे कि ब्रिटिशर्स ने उन सारी इगैलिटेरियन वैल्यूज में से एक को भी हिंदुस्तान में लागू नहीं किया, और इस वजह से वो ब्रिटिश रूल का क्रिटिक भी करते थे और वो ब्रिटिश रूल को भी अपना दुश्मन मानते थे। 1930 दुश्मन नहीं कहना चाहिए, मगर उसका भी उसके भी क्रिटिक थे, और साथ में वो कांग्रेस के भी क्रिटिक थे, क्योंकि उनका ये और कांग्रेस का क्रिटिक होना लाजमी सी बात है। कांग्रेस एक बेसिकली उन्होंने कांग्रेस ने कास्ट एलिमिनेशन का पॉइंट अपने एजेंडा में सब शामिल किया, जब अम्बेडकर का मूवमेंट ग्रो कर गया प्रेशर की वजह से उन्हें शामिल करना पड़ा, और सिर्फ उन्होंने एजेंडा में शामिल किया, कभी भी उन्होंने कास्ट के एलिमिनेशन के लिए कोई भी रियल काम नहीं किया कांग्रेस ने। और इवन आपको जब बाद में आपको पता था हिंदू बिल जो था, हिंदू कोड बिल, उसको वाटर डाउन करने का काम कांग्रेस ने उस समय के एक फ्यूडल लॉज के दबाव में किया था। कांग्रेस के ने जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा था वो सारे एक फ्यूडल लॉज थे, हिंदू ब्राह्मणिकल हायरार्की के कर्ता धर्ता, तो उनके दबाव में, और नेहरू ने कुछ नहीं बोला इस पे, इसीलिए अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्टर के तौर पर इस्तीफा दिया था ना, हिंदू कोड बिल का जो वाटरिंग डाउन हुआ था उसी वजह से अम्बेडकर नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दिया था। और दूसरा कारण ये था कि वो लेबर मिनिस्ट्री जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि लेबर मिनिस्ट्री के जरिए मैं दलित के लिए कुछ काम कर सकता हूँ, और दोनों ही अम्बेडकर ने नेहरू ने उनको नहीं दिया। तो बहरहाल तो एक ये जो स्ट्रैटी अम्बेडकर की तीसरी स्ट्रैटी पे आते हैं, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कोलैबोरेटिंग विद द रूलर, जो भी रूल में था उसके साथ कोलैबोरेट किया अम्बेडकर, ये फैक्ट है, इसमें कोई आपको नहीं, लेकिन ये उनकी फिलोसफी का पार्ट था, इसलिए कि वो रूलर से प्यार करते थे या ऑपरेटर से उनको बड़े प्यारे लगते थे, कारण ये नहीं था, और अम्बेडकर की पूरी लड़ाई ऑपरेशन के खिलाफ थी, तो ऑब्वियसली वो ऑपरेशन से प्यार तो नहीं करते थे और उनका कोई उनके तरफ झुकाव का नजरिया नहीं। उनकी एक फिलोसफी थी कि स्टेट मोस्ट रैशनल एक्टर है और इसलिए स्टेट से जो काबिज होगा, अगर आप सोसाइटी में भी कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको स्टेट को परसुएड करना पड़ेगा कि वैसा एफर्मेटिव एक्शन वो ले जो कि सोशल डिस्पैरिटी को खत्म करे। और इसलिए अम्बेडकर आप देख सकते हैं कि एक खास टाइम में फिर अंग्रेजों के साथ ओपनली कोलैबोरेट करते हैं, जिसका पहला इंस्टेंस था 1941 जब वॉर काउंसिल बनाया था, वॉर एफर्ट में पार्टिसिपेशन के लिए डिफेंस काउंसिल एक बनाया था कॉलोनियल स्टेट में, और उसका जिम्मा अंबेडकर को सौंपा गया था। और एक तरीके से अंबेडकर को भारत के उस फोर्स पार्टिसिपेशन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसके लिए कंसेंसस तैयार थे अंबेडकर ने की, ये भी फैक्ट है। जिससे भी आप जैसे फैक्ट को नकार के आप नहीं एनालिसिस नहीं कर सकते, जो फैक्ट है वो अंबेडकर, और फैक्ट को कहां से देखेंगे, खुद अंबेडकर की राइटिंग से, किसी और का कहा सुना मत सुनिए, जो अंबेडकर ने लिखा है वो पढ़िए, अंबेडकर ने जो लिखा है वो पढ़ने से स्पष्ट होता है चीज। फिर 1942 में वो वायसराय के काउंसिल में मेंबर ऑफ लेबर बने, और मेंबर ऑफ लेबर बन के उन्होंने दो बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन किए। एक उन्होंने इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल पास किया, जिस इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल के कारण हर एम्प्लॉयर के लिए ये ऑब्लिगेटरी हो गया कि वो अपनी फैक्ट्री या एंटरप्राइज में यूनियन को रिकॉग्नाइज करे, बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था मानना चाहिए। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी में और आर्म्ड फोर्सेज में 8.33% का रिजर्वेशन, ये भी उन्होंने मेंबर ऑफ लॉ के तौर पे वायसराय के काउंसिल में किया। तीसरा, उन्होंने ब्रिटिश टेक्निकल और प्रोफेशनल कॉलेजेस में दलित स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन विनोवर किया, तो उन्होंने काम किया और मेंबर ऑफ लेबर के तौर पे कुछ उन्होंने रियायतें हासिल की वहां पर, और इस रूप में पार्शियली प्रैग्मेटिक स्ट्रेटजी भी पूरी तरह फेल तो करेगी नहीं, क्योंकि वो इमीडिएट यूटिलिटी को देखती है, और कोई फिलोसफी अगर इमीडिएट यूटिलिटी को भी देखकर काम करेगी तो हिस्टोरिकली अनसक्सेसफुल होगी, लेकिन शॉर्टेड ड्यूरी में वो इट सीम्स टू वर्क एटलीस्ट। तो इसलिए कुछ जो 42 से 46 तक का वो पीरियड था उसमें अम्बेडकर एक तरीके से कुछ कंसेशन और कुछ राइट वो दलित पॉपुलेशन के लिए और वर्कर्स के लिए विनो करते, और इसीलिए वो बाद में लेबर मिनिस्ट्री चाहते थे आजादी के बाद, वो लॉ मिनिस्ट्री के बजाय वो लेबर मिनिस्ट्री प्रिसाइसली इसलिए चाहते थे। और यहीं से पता लगता है कि अम्बेडकर के ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी पे बहस करना एकदम बकवास, अम्बेडकर जिस फिलोसफी को मानते थे उस फिलोसफी के स्टैंड पॉइंट से उन्होंने लगातार कोशिश की। फिर सरकार बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ऑब्वियसली अम्बेडकर उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे उन्होंने देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए, मिसाल के तौर पे उन सारे ऑपरेसिव एक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में शामिल किया गया जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, फॉर एग्जांपल डिस्टर्ब एरिया एक्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट अमेंडमेंट भारत का पैदावार है, लेकिन आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट का सोर्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अम्बेडकर उससे नहीं बोले, ये ठीक था। कई लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि उसी समय जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय हजारों दलितों की एक तरीके से जेनोसाइड किया गया तेलंगाना में, दलित अशुद्ध जातियां थी जो तेलंगाना का स्ट्रगल था, बेसिकली वो लैंडलेस दलित का स्ट्रगल था अगर आप ईमानदारी से फैक्ट्स को उठा के देखें। और जिस समय पहला मौका था इंडिपेंडेंस के बाद जब हिंदुस्तान की अपनी जनता के ऊपर इंडियन आर्मी से हमला करवाया गया तेलंगाना रेबेलियन को दबाने के लिए, और हैदराबाद के निजाम और नेहरू की आर्मी के खिलाफ अकेले लड़ते हुए उसको खून के दलदल में जो दलित शहीद थे वहां के जो लड़ रहे थे लैंड के राइट के लिए, उस पूरे रेबेलियन को खून के दलदल में डुबा दिया गया। लोग कहते हैं अम्बेडकर ने इससे कुछ नहीं बोला, क्लियरली ये साइलेंस इज कॉन्स्टिट्यूएंट, लेकिन अम्बेडकर जेन्युइनली मानते थे कि सबवर्सिव तरीके से नहीं होना चाहिए, और उनका जेन्युइनली ये मानना था दो चीजें, प्रेजेंट रेबेलियन और मिलिटेंट यूनियनिज्म, ये दोनों गलत है, ये अम्बेडकर का मानना था। और बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक में सिर्फ दलित क्वेश्चन नहीं था, धनंजय कीर को पढ़िए, धनंजय कीर से अम्बेडकर ने क्लियर कट बोला था कि मिलिटेंट यूनियनिज्म एंड कम्युनिज्म आर ट्विन्स, और बेसिकली अगर किसी ट्रेड यूनियन मूवमेंट में कम्युनिस्ट उसमें वो है तो वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपने पॉलिटिकल गेन, अम्बेडकर को ऐसा लगता था कि वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और ड्यूई का ये मानना था यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में भी जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो परसीव्ड है, वो रियल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इसलिए वो परसेप्शन परसीव्ड कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से वर्कर नेचुरल टेंडेंसी रखता सोशलिस्ट बनने की तरफ और इम्प्लॉयी ड्यूई नहीं लिखा था और इम्प्लॉयर नेचुरल टेंडेंसी रखता है ऑपरेटिव बनने की तरफ और स्टेट के मीडिएशन से इसको रिजॉल्व करना चाहिए। इसलिए मिलिटेंट यूनियनिज्म नहीं होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन दलित का सेम घड़े से पानी पीना या उसके क्या बोलते हैं कि कोटिंग सेक्शन में काम करना, ये बेसिक क्वेश्चन था नहीं। और अगर आप सच्चे खुद अम्बेडकर की राइटिंग्स को यदि पढ़ें और अम्बेडकर के इंटरव्यूज और स्पीचेस को पढ़ें तो बेसिक क्वेश्चन ये था कि वो मिलिटेंट रेड यूनियनिज्म को गलत मानते थे और इस वजह से ज्योतिबा फुले के एक फॉलोअर लोखंडे ने मिल हैंड्स एसोसिएशन बनाया। अम्बेडकर ने उस तरीके से यूनियनाइज वर्कर को इवन दलित वर्कर को कभी नहीं किया। तो पेजेंट रेबेलियन और मिलिटेंट यूनियनिज्म दोनों को कम्युनिज्म से जोड़ के देखते थे और कम्युनिज्म उनके हिसाब से सुअरों का दर्शन था और इसलिए एक नेचुरल विदाउट नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट मार्क्सिज्म स्टैंड्स फॉर वो अपने प्रैग्मेटिक प्रेजुडिस से एक डिपार्ट कर रहे थे। पर इसलिए ही तेलंगाना के स्ट्रगल के बारे में भी अम्बेडकर ने नहीं बोला। ऐसा लगता है बोलना चाहिए था लेकिन बोला नहीं, ये सच बात है। और जिस समय ऑप्रेस नेशनैलिटीज को सरदार पटेल जबरदस्ती मिला रहे थे उस पर भी अम्बेडकर शांत रहे थे, नहीं बोला था कुछ, आप देख सकते हैं रिकॉर्ड। तो अब अम्बेडकर का ये जो कॉम्प्रोमाइज वाला बिहेवियर था वो था रूलर के साथ कोलैबोरेट करना। यू कांट एंटागोनाइज स्टेट, स्टेट को आप एंटागोनाइज नहीं कर सकते बिकॉज दैट्स द मोस्ट रैशनल एक्टर ऑफ चेंज इन सोसाइटी। तो अम्बेडकर का जो फर्म बिलीव था उसको ठीक है, अब इसको कोई जिद से अड़ जाए और मचल जाए कि नहीं नहीं अम्बेडकर मार्क्सवादी क्यों नहीं थे, तो पागल है ना। अम्बेडकर जो थे वो थे, वो जो मानते थे वो मानते थे और अम्बेडकर ने किसी पर्सनल गेन या डिसऑनेस्टी की वजह से कोई चीज कदम नहीं उठाया। उनका जो पॉलिटिकल फिलॉसफी था उस पर फर्मली स्टैंड करते थे। वो पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है ये अभी उससे हम डिसएग्री करें एग्री करें ये सवाल था उसके सामने, वो हम आगे आ जाएंगे। उससे आखिरी स्ट्रेटजी पे आके थोड़ा सा बात मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि डिस्कशन के लिए भी 2 बजे से टाइम रहेगा, 2 घंटे कम से कम तो अच्छा रहेगा, 2-3 घंटे डिस्कशन में रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। जो आखिरी स्ट्रेटजी था वो था कन्वर्जन। कन्वर्जन को लेकर भी अम्बेडकर का स्टैंड बहुत चेंज करता रहा। जैसे आप पहला प्रयास उनका ये था जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी वो लगते हैं कि पहला, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में अंत में इस नतीजे पे पहुंचते हैं, आप एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपने पढ़ाओ कि कास्ट एनिहिलेट नहीं हो सकती है, अंत में वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं। बाद में वो कन्वर्जन का वो देते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तो 36 ही आ गया लेकिन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की कोई स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी। अगर आप इस उम्मीद से कभी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ेंगे, इट्स अ वेरी गुड एक्सपोजर ऑफ हिंदू कर्मकांड एंड इडियोटिक थिंग्स but it doesn't provide you with any strategy and tactics to do away with that. That's the truth. So, आखिरी जो स्ट्रेटजी था वो उसकी पहली बार जो कन्वर्जन की बात करते हैं 1927 में करते हैं। 1927 से पहले अम्बेडकर ने क्लियर कट कन्वर्जन का कोई रेफरेंस नहीं है। अम्बेडकर की राइटिंग अगर आप क्रोनोलॉजिकली देखें तो पहला रेफरेंस कन्वर्जन को आता है वो 1927 में आता है, जलगांव डिप्रेस क्लासिक कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो बोलते हैं कि ये घटिया हिंदू, अगर हम बोलते हैं हम इक्वालिटी के लिए हिंदू रिलीजन के फोल्ड में स्ट्रगल करेंगे और अगर हम उसमें स्ट्रगल करके इक्वालिटी हासिल नहीं कर पाए तो हिंदू धर्म के फोल्ड को और इस पहचान को लात मार के किनारे कर देने में हमारा कोई नुकसान नहीं है और हमें कोई ऐसी रिलीजियस आइडेंटिटी तलाश करनी चाहिए जो कि ह्यूमनिस्ट आइडियल, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा था, इडियलाइज फ्रेटरनाइज एंड फ्रीडम, फ्रेटर्निटी फ्रीडम एंड इक्वालिटी, हाँ इक्वालिटी वही इगलाइट इगलिटेरियन से इक्वालिटी। तो ये तीनों स्वतंत्रता भ्रातृत्व और समानता के नारे को जो मानता हो रिलीजन उसको हम मानेंगे। जो पहला रिलीजन भी उन्होंने कंसिडर किया वो बुद्धिज्म नहीं था, पहला रिलीजन जो उन्होंने कन्वर्जन के लिए कंसिडर किया वो सिखिज्म था और सिखिज्म में कन्वर्जन की जब उन्होंने पहली बार बात की तो उन्होंने 1927 में अपने 13 फॉलोअर्स को उन्होंने अमृतसर भेजा था कि आप सिखिज्म का पूरा स्टडी करो। उन्होंने स्टडी किया भी और उस वक्त कई दलित कन्वर्ट हुए सिखिज्म में और उसी वक्त अम्बेडकर 1936 में शायद, हाँ 36 में वो लंदन जाते हैं ये अंग्रेजों के सामने प्रपोजल रखने कि जो दलित सिखिज्म में कन्वर्ट होंगे उनको वो सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत सिखों को मिलेंगे और रिजर्वेशन माइनॉरिटी के तौर पर सिखों को मिलेंगे। तो अंग्रेजों ने सीधे कह दिया कि सिख पॉपुलेशन को जो भी माइनॉरिटी के तौर पर राइट मिलेगा उसके बेनिफिशियरी केवल जज से होंगे, तो पंजाब के ओरिजिनल जज से। वो जो कोई भी दलित कन्वर्ट होगा सिखिज्म में तो उसको नहीं मिलेगा। अम्बेडकर वापस आए इत्तेफाक से, उसी वक्त सिखिज्म में जो दलित कन्वर्ट हुए थे उन्होंने बताया कि यहाँ ऑपरेशन से कोई छुटकारा नहीं। वास्तव में जज सिख प्रेजेंट ने दलित का उससे भी भयंकर उत्पीड़न किया, ब्रूटल जिसको कहते हैं ना। एक तो वो कि सिम्बॉलिक प्लेन पे हम आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी डिग्निटी को कुचलने की कोशिश करते हैं, और एक हम आपके हाथ पांव काटते हैं या आपकी जीभ काटते हैं या आपके कान काटते हैं। इस तरह के नेकेड ब्रूटल जो कि कुलत फार्मर जाती है इस किस्म का वो एट्रोसिटीज कर सकती है। मतलब प्राचीन काल में एक टाइम में ब्राह्मण भी लैंडलॉर्ड से तो वो करते थे, बाद में ब्राह्मणिकल हेजेमनी और हेजेमनी खो गई, इसलिए वो नेकेड फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन के लिए इन्होंने डेलीगेट कर दिया वो फंक्शन एक तरीके से। भारत देश के मिडिल क्लास प्रेजेंट कुलत फार्मर यादव उन्हीं के बीच में से जो फार्मर एक पैदा हुई आबादी रेड्डी कम्मा के बीच में से जो एक प्रेजेंट कुलत फार्मर रिच प्रेजेंट्री पैदा हुई वो सबसे ब्रूटल रिप्रेशन किया उन्होंने। पिछले 30 साल का हिस्ट्री उठा के देखो, भूहार जाति करती बिहार में, जाट करते हैं हरियाणा में, यादव करते हैं वहां पर ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में, रेड्डी कम्मा करते हैं आंध्रा में, ये सब ब्राह्मण की शूद्र जाति है। भूहार को छोड़ के एक भूहार को छोड़ के शूद्र जाति है। तो हाँ 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 उसका ओरिजिन इनफैक्ट इरफान हबीब ने बताया कि वो शूद्र जाति से ही ओरिजिन है, लेकिन उसका इकोनॉमिक माइट बढ़ने के साथ व्हाट एमएन श्रीनिवास कॉल्ड सेंसिटाइजेशन, तो सेंसिटाइजेशन के जरिए उनका रिचुअलिस्टिक स्टेटस लूज हो गया। ऐसा बहुत जातियों के साथ हुआ है। जाट बेसिकली एक चांडाल जैसी ट्राइब थी जिसका एविडेंस मौजूद है, चांडाल से मिलती जुलती एक स्कैवेंजिंग करने वाली जाति थी जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे पाई जाती थी, जिसको अंग्रेजों ने पहली बार लाके बताया भारत के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में। लेकिन किसी जात को आज आप चांडाल बोल देंगे तो बदला हो जाएगा यहाँ, तो उनका स्टेटस ऑफ मिडिल कास्ट का बन गया। इसलिए संहिताओं और वेदों से कास्ट नहीं बनी, कास्ट से संहिता और वेद बने। अम्बेडकर इस मामले में गलत है सिंपल। बहरहाल तो कन्वर्जन के लिए सिखिज्म, फिर दूसरे सिख नेताओं से अम्बेडकर की बातचीत हुई मास्टर तारा सिंह से, तो मास्टर तारा सिंह ने इनकार कर दिया जो अकाली नेता थे। उन्होंने कहा कि अगर इतने करोड़ दलित कन्वर्ट होंगे सिखिज्म में तो जट की एंट्री जो है वो तो माइनॉरिटी हो जाएगी प्रेज एंट्री में, और लीडरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगी इन द कोर्स ऑफ टाइम दलित को, तो हम नहीं चाहते कि आप कन्वर्ट हो। तो उससे निराश होते हैं अम्बेडकर। फिर वो देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्बेडकर ने कन्वर्जन के लिए कभी भी इस्लाम को कंसिडर नहीं किया, कभी भी। इस्लाम में खुद दलित हुए कन्वर्ट, वो अलग चीज है। कई जगहों पर इस्लाम में कन्वर्ट हुए क्योंकि दलित इस बात को समझते थे कि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा मिर्ची इसी बात से लगी होगी। अगर वो जैसा कि भगाना कांड के विक्टिम्स ने लिखे ना, आपने पढ़ा होगा पेपर में, भगाना कांड जो हुआ था हरियाणा के, उसके विक्टिम्स उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, उसकी वजह से बड़ा अब उछल पुछल मची थी वहां ब्राह्मणों में, हालत खराब थी सबकी, उनको लग रहा था कुछ किया जाए कुछ किया जाए। तो लेकिन अम्बेडकर ने इस्लाम को कंसिडर नहीं किया, और पहली बार सिखिज्म को क्यों कंसिडर किया था ये भी जानना चाहिए। 1936 में अम्बेडकर की मुलाकात मुंजे से होती, हिंदू सभा का लीडर और गोलवलकर और हेडगेवार का ट्रू टीचर था, जो मुसोलिनी से भी मिलकर आया था, इटली वगैरह यात्रा करके आया था। मुंजे ने बोला कि आप सिखिज्म में, सिखिज्म मुंजे के सलाह पे सुना था अम्बेडकर का, ये भी फैक्ट है। हिस्टोरिकल आप कोई भी अथॉरिटेटिव बायोग्राफी पढ़िए अम्बेडकर की तो आपको पता लग जाएगा, और अम्बेडकर ने उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया था। अम्बेडकर ने कहा कि आई कॉल अपॉन दलित टू कन्वर्ट इन टू सिखिज्म because by that we will leave only Hindu religion but we will stay within the fold of Hindu civilization and culture. ये अम्बेडकर ने कहा। खैर सिखिज्म का प्रोजेक्ट जब नहीं हुआ, और फिर उनसे दफा पूछा भी गया कि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को इतना सीरियसली आपने कभी कंसिडर क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि वो भारतीय सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं, इसलिए नहीं कहा। लेकिन उन्हीं के एनालिसिस के हिसाब से हिंदू रिलीजन भी भारतीय सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है, हिंदू तो इन्वेडर्स है। तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है आप अगर देखें, क्योंकि अम्बेडकर वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि दैट वॉज इमीडिएटली पॉलिटिकली फीजिबल, दैट वॉज मैटर फॉर हिम, वही मैटर करता था अम्बेडकर के लिए। और अंत में फिर उन्होंने 1937 से लेकर 1950 तक दोबारा अम्बेडकर के राइटिंग में आपको कन्वर्जन का रेफरेंस एक या दो जगह मिलता है, बाकी नहीं मिलता, आप पूरा कलेक्टेड वर्क के साथ करेंगे। एक या दो जगह कन्वर्जन का रेफरेंस है। इस बीच में बुद्धिज्म का वाकई उन्होंने त्रिपिटक का स्टडी किया, 1950 में श्रीलंका भी गए थे जहाँ पे उन्होंने कलेक्ट किया बुद्धिस्ट वर्क को। तो बुद्धिज्म के बारे में भी जो उनका आइडिया था बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि एक आइडियल थे वो था, क्योंकि इरफान हबीब के काम ने दिखाया है कि बुद्धिज्म का भी अपना योगदान था कास्ट सिस्टम को और अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देने में, क्योंकि बुद्धिज्म का जो नॉन वायलेंस पे इंफेसिस था उसकी वजह से बुद्धिस्ट चेक्स ने इक्सिंग या क्या नाम था उस स्कॉलर का, बुद्धिस्ट स्कॉलर इक्सिंग या ऐसा कुछ नाम था, मैं अभी उसको रेफर करके बता सकता हूँ, उसने साफ बोला था कि जो भोजन संग्राहक जातियां पास्टोरल नोमैड्स हैं वो पास्टोरल नोमैडहीन है। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में वो हीन है क्योंकि वो जीव हत्या करते हैं। और वो यहाँ तक गया कि हल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स से कहा कि तुम खुद खेती नहीं करोगे, तुम खुद खेती मत करो क्योंकि हल के इस्तेमाल से जीव हत्या होती है। तो ये जीव हत्या पे एक बहुत ही मैकेनिकल किस्म का इंफेसिस था, उसकी वजह से अनटचेबिलिटी, कई ट्राइब्स अनटचेबल बनी ही इस वजह से थी क्योंकि जीव हत्या पर एक बहुत ही अजीब किस्म का इंफेसिस था। और बुद्धिज्म जब एक इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन बन गया, बुद्ध का मकसद कभी धर्म स्थापना करना नहीं था, बुद्ध एक फिलोसफी दे रहे थे, एक वे ऑफ लाइफ टीच कर रहे थे, उसका आप क्रिटिक करो वो बात अलग है, अभी उसको नहीं जाते हैं, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन को इस्टेब्लिश करना ये बुद्ध का मकसद नहीं था। लेकिन बुद्ध क्योंकि एक आइडियल, बुद्धिज्म एक आइडियलिस्ट और मैकेनिकल मटेरियलिस्ट फिलोसफी है, इस वजह से देर सवेर उसको इस तौर पर इंस्टीट्यूशनलाइज होना था। और जब वो हुआ तो बुद्ध ने खुद इस बात का उठाया कि कर्जदार किसान, सैनिक और स्त्री वो प्रव्रज्या नहीं ले सकते, भिक्षु नहीं बन सकते। प्रव्रज्या लेने के लिए कर्जदार लैंडलेस लेबर को पहले अपना कर्ज चुकाना होगा, यानी कि दलित प्रव्रज्या नहीं ले सकते क्योंकि 100% कर्जदार लैंडलेस लेबर दलित थे, तो दलित प्रव्रज्या नहीं ले सकते थे, नंबर वन। नंबर टू, स्त्रियां प्रव्रज्या तब ले सकती है जब उनके पति आज्ञा दे, ये बुद्ध ने कहा, यानी कि मठ में वो तब आकर भिक्षु या भिक्षुणी की तरह जीवन व्यतीत कर सकती है जब उनकी पति आज्ञा दे। तो इस हिसाब से आज भारत में अगर औरतें आज्ञा लें, आपको लगता है पति आज्ञा देंगे, भिक्षुणी भी देगी, मुझे तो नहीं लगता। और उस हिसाब से औरतों के दरवाजे बंद हो गए उसके लिए, और सैनिक स्टेट से आज्ञा लेकर, सरकार से आज्ञा लेकर, किंग से, उस समय का किंग। तो बुद्धिज्म एक इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन बनने के साथ कास्ट सिस्टम का एनिलेटर नहीं रह गया, कास्ट सिस्टम के खिलाफ और ब्राह्मणिकल जो सिद्धांत था बुद्ध ने उसका बहुत बढ़िया खंडन पेश किया, वो अलग चीज है। लेकिन किस हद तक उसने कास्ट सिस्टम को कमजोर बनाया, या इनफैक्ट इरफान हबीब या सतीश चंद्रा के थीसिस को लेकर चले तो किस हद तक उसने मजबूत बनाया कास्ट सिस्टम, तो ये भी एक डिबेट का, इस पर भी डिबेट की जानी चाहिए। तो बहरहाल अंत में अम्बेडकर कन्वर्ट होते हैं अपने मृत्यु से कुछ हफ्तों पहले, और खैर वो तो आप जानते ही पूरी कहानी। उसके बाद बहारों का एक कन्वर्जन का चलता है, अगले एक डेकेड में 2500 से करीब जो बुद्धिस्ट की संख्या थी कन्वर्जन के स्टार्ट होने से लेकर 10 साल में 2500 से 5-5.5 लाख तक पहुंची वो कन्वर्ट हुए। एग्जैक्ट फिगर मैं देख के दे सकता हूँ, लेकिन महार जाति के अलावा ज्यादा कन्वर्जन नहीं हुआ। और कन्वर्जन की स्ट्रेटजी ने भी क्या किया, नब बौद्ध इज इक्वल टू दलित इंडिया। और अम्बेडकर ने इनफैक्ट खुद कहा था लेट 1930s में, दलितों को संबोधित करते हुए छोटा सा लीफलेट है उनका, पैम्फलेट का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें कहते हैं कि अगर दलित क्रिश्चियनिटी या किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या उन्हें कुओं से पानी पीने को मिलेगा, क्या उन्हें धर्म ग्रंथ पढ़ने को मिलेंगे, क्या उन्हें शिक्षा और रोजगार के बराबर अवसर मिलेंगे। मुझे अफसोस के साथ ये मैं कोट कर रहा हूँ वर्बैटिम, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन सारे सवालों का जवाब नहीं है। तो अम्बेडकर की लास्ट डेस्परेट स्ट्रैटेजी कन्वर्जन, वरना अम्बेडकर कन्वर्ट 56 में नहीं होते, बहुत पहले हो जाते हैं, 1927 में कन्वर्जन की बात होती, वो तब तक उसी फोल्ड में पॉसिबिलिटी तलाश रहे थे। और उसके बाद ये भी उनके समझ में आ गया था कि हिंदू फोल्ड को छोड़ भी दें तो अस्पृश्यता नहीं कर सकते, लेकिन अब डेस्परेट स्ट्रैटेजी लास्ट उनकी वो ठीक होती। तो इसलिए अगर आप ये सवाल उठाना चाहते हैं, अब मैं अंतिम नुक्ते पे आ रहा हूं अपनी बात की, कि अंबेडकर का पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थॉट का कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरा मानना है दो कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन। एक, दलित आबादी में सेल्फ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट कि अगर हमें बराबर का अवसर दिया जाए तो हम हर क्षेत्र में एक्सेल कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये अम्बेडकर का पहला। दूसरा, कम्युनिस्टों ने एम्पिरिकली दलितों के स्ट्रगल लड़े, इनफैक्ट अम्बेडकर से ज्यादा लड़े, लैंडलेस लेबर का जो स्ट्रगल हुआ विद फोर्स लड़े, लेकिन नेशनल पॉलिटिकल एजेंडा पे कम्युनिस्ट पार्टी कास्ट क्वेश्चन को जिस प्रोमिनेंस और जिस पर्टिकुलर इम्फेसिस के साथ रखा जाना चाहिए था वो सीपीआई नहीं रख पाई, और उसके बाद आने वाली जो रेवोल्यूशनरी लेफ्ट पार्टी थी वो भी नहीं रख पाई। अब दूसरे छोर का एक वो पैदा हुआ है, हाय हाय हमने बहुत पाप किया अब हम जय भीम बोलेंगे, ये भी कोई रास्ता नहीं है। ये जो दूसरा सरेंडर का है, आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज का है लेफ्ट का, जो इस समय सीपीआई माओवादी से लेकर आनंद तेलतुंबड़े से लेकर तमाम लोग कर रहे हैं कि एक तरह से पाप धोने के लिए अम्बेडकर को नहीं अपनाना चाहिए। मेरा कम्युनिस्टों से भारत की यही है, पाप धोने के लिए अम्बेडकर, या तो आप अम्बेडकर की पोलिटिकल फिलोसफी मानते हो तो अपना हो, लेकिन आप उसकी पोलिटिकल फिलोसफी नहीं मानते हो तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मत करो, क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जितना नुकसान दलित तौर को हुआ है किसी और चीज से उतना नुकसान नहीं हुआ है। बथानी टोला के हत्यारे छोड़ दिए जाते हैं तो ये दलित संगठन जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं सड़क के ऊपर किसी लड़ते क्यों नहीं, वो सिर्फ इस बात से क्यों सिंबॉलिक और सिम्टोमेटिक इशू पे क्यों हल्ला मचाते हैं कि पूरे यूनिवर्सिटी का नाम अन्ना भाव साठी यूनिवर्सिटी का, दैट डेफिनेटली इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रगल कि हमें अपने सिंबल्स को भी रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, बट ये इंटायर स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ दलित एंड इमेंसिपेशन ऑफ दलित कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू सच सिंबॉलिक इशूज। क्या एनसीईआरटी के पॉलिटिक्स का कार्टून गलत था तो सुहास पलशिकर का ऑफिस सुधार दिया, या सुहास पलशिकर इज ए अम्बेडकर एक सोशलिस्ट बेसिकली, उनका बोला उसको नहीं बोलते हैं लेकिन उनके उसको अगर किसी कैटेगरी में आप रखो तो इधर अम्बेडकर एक वो किसी अपमान करने के नजरिए से कुछ ये दिखाने के लिए कर रहे थे कि उस समय नेशनल जो मीडिया था उसका कास्ट प्रेजुडिस किस तरीके से काम करता था, लेकिन इसमें वो भावनाओं को ठेस लग जाती है, पत्ता टूटता है तो भावनाओं को ठेस लग जाती है, बुद्ध टूटता है तो भावनाओं को ठेस लग जाती है, ये भावनाओं को ठेस का लॉजिक इट्स अ फैशिस्ट लॉजिक, ये पॉलिटिक्स को एस्थेटाइज करता है ना, पॉलिटिक्स को एस्थेटिक कल्चर बनाएगी, ये दैट्स नॉट एस्थेटिक है ना, तो पॉलिटिक्स को एस्थेटाइज नहीं करना चाहिए, एस्थेटिक्स को पॉलिटिसाइज करना चाहिए, और कोई भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इट्स डूम्ड टू डू दैट, उसका शाप क्योंकि वो आइडेंटिटी के गोल चक्कर से कभी बाहर नहीं निकलती। और ईमानदारी से अपने दिल से हाथ रख के बताइए कि क्या 40 साल के दौरान पिछले महाराष्ट्र में खास तौर पे, तमिलनाडु में उसके बाद खास तौर पे, आंध्रा में उसके बाद खास तौर पे, और इन जनरल पूरे भारत में आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स ने दलित इमेंसिपेशन के कॉज को फायदा पहुंचाया है या नुकसान, एक ने भावनाओं और सेंटिमेंट्स को किनारे रख के बताई, खुद सोचिए इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। देखिए आइडेंटिटी का बेसिक लॉजिक क्या है, एनी आइडेंटिटी कैन बी स्ट्रेंडन ओनली बाई स्ट्रेंडनिंग दी एंटागोनिस्टिक आइडेंटिटी, अदरिंग का प्रोसेस होता है ना उसमें, जैसे मैं बोलूंगा मैं ये हूं तुम लोग तो अलग लोग हो, है ना, द मोमेंट यू अदर योर सेल्फ यू आर ऑल्सो अदरिंग द अदर आई मीन द पीपल फेसिंग यू, और आइडेंटिटी का बेसिक लॉजिक ये है कि वन आइडेंटिटी बिगेट्स अनदर आइडेंटिटी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ वन आइडेंटिटी बिगेट्स दी स्ट्रेंथनिंग ऑफ अनदर आइडेंटिटी, तो अपने आप सम्मान के लिए लड़ा जा सकता है बिना आइडेंटिटेरियन पॉलिटिशियन हुए, क्या ये संभव नहीं है, क्या ये संभव नहीं है कि हम गरीब दलित आनंद तेलतुंबड़े के डेटा के हिसाब से आजादी के बाद के 6 दशक के रिजर्वेशन के बाद 9% दलित आबादी मिडिल क्लास बन पाई, और उन्होंने कहा ये 9% शुरुआत के कुछ दशकों में बन गए उसके बाद इसमें कोई नया इजाफा नहीं हुआ, 90 to 91% जो दलित आबादी, शायद 9% बोलते हैं 11 ऐसा ही कुछ डेटा है, 10 के आसपास ही है, 9 to 11%, अगर ये शुरुआती दशक में हो गया और अब आज भी 90% दलित आबादी खेतिहर मजदूर और इंडस्ट्रियल प्रोलेटेरियट और अर्बन पुअर है, तो दलित इमेंसिपेशन की लड़ाई का सही ओरिएंटेशन क्या हुआ, जो कुछ पैदा हो रहा है उसके साझे हक की लड़ाई लड़ेंगे, और वो साझे हक की लड़ाई आपको स्टेट नहीं देगा। इसलिए अंबेडकर से डिबेट का इश्यू क्या है, टू पुट इट इन सिंपलर टर्म्स, इट्स रिफॉर्म और रेवोल्यूशन, सुधार या क्रांति। अगर आपको लगता है कि कास्ट सिस्टम को पीसीएल रिफॉर्म के जरिए कास्ट को आप एनिमेट कर सकते हैं तो
चलिए बहस करते हैं।
अगर आपको लगता है कि वो कास्ट सिस्टम जो डिवीजन ऑफ लेबर के तौर कास्ट है, क्या कास्ट डिवीजन ऑफ लेबर है, ये बात सच है, लेकिन ये खास किस्म का जो अंबेडकर ने कहा, ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी वाला डिवीजन ऑफ लेबर है। और एक चीज मिस करते हैं अंबेडकर कि वो ये नहीं बता पाते कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी पैदा कैसे हुई। वो बताते हैं कि संहिताओं से पैदा हुई है ना, ब्राह्मण संहिताओं से। ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी इसलिए पैदा हुई क्योंकि एक लेबर डिवीजन जब सोसाइटी में पैदा हुआ तो उस एक्सप्लॉयटेटिव लेबर डिवीजन को, वैसे तो दुनिया के हर रूलिंग क्लास उस एक्सप्लॉयटेटिव लेबर डिवीजन को लेजिटिमेट करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने इंटेलेक्चुअल के जरिए सिद्धांत पैदा करवाता है, नए नए एक्सप्लॉयटेटिव सिद्धांत रचवाता है, हायरार्की के प्रिंसिपल रचवाता है। जैसे कि मिस्र में गिल्ड का, हेरिडिटरी गिल्ड का प्रिंसिपल रचा था एंशियंट मिस्र के राजाओं ने। लेकिन एक चीज जो कास्ट सिस्टम को पर्टिकुलरली अलग बनाती है वो ये है कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर को जस्टिफाई करने के लिए जो आइडियोलॉजिकल एपरेटस खड़ा किया गया उसने इसको रिचुअलिस्टिकली ऑसिफाई कर दिया है ना, अश्मीभूत कर दिया। कर्मकांडीय तौर पर इसका जीवाश्मीकरण, जैसे जीवाश्म पत्थर पे नहीं वो पाया जाता है, वो उसमें इंडेड हो जाता है ना, ऑसिफाई टाइप हो जाता है उसमें। तो उस तरीके से एक ऐसा लेबर डिवीजन जो कि क्लास डिवीजन के तौर पे ही पैदा हुआ था, कास्ट वर्णा डिवीजन, वर्णा कास्ट डिवीजन एट द पॉइंट ऑफ इट्स ओरिजिन इट वाज क्लास डिवीजन, बट इट वाज रिचुअलिस्टिकली ऑसिफाइड बाय द रूलिंग क्लासेस क्षत्रिय और ब्राह्मण। और रिचुअलिस्टिक ऑसिफिकेशन की वजह से क्लास रिलेशंस बदले, लेकिन जो कास्ट हायरार्की है वो उसके पीछे पीछे एक कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें, क्योंकि रिचुअलिस्टिक ऑसिफाई जब आप करते हैं तो कोड में दर्ज हो जाता है ना संहिताओं में, और उसको बदलने के लिए बड़ा द्रविड़ प्राणायाम करना पड़ता है, उल्टे सीधे करतब करने पड़ते हैं, इंटेलेक्चुअल सोमरसॉल्ट करना पड़ता है, जो कि ब्राह्मण करके आ रहे हैं पिछले 2500 साल से इंटेलेक्चुअल सोमरसॉल्ट। इसलिए छत्रपति शिवाजी का भी राज्याभिषेक करना था, एक शूद्र किंग के तौर पर करना था, तो बनारस से एक ब्राह्मण को इम्पोर्ट करना पड़ा जिसने ताओ के अंगूठे से तिलक करना को रजामंद हुआ, और ताओ के अंगूठे से उसने तिलक किया और छत्रपति बने हुए। तो ब्राह्मण इस तरह के इंटेलेक्चुअल सॉमरसॉल्ट करते हैं। उसी तरीके से पल्लव चोल चालुक्य डायनेस्टी के दौर में उन्होंने शूद्रों के बीच में असत शूद्र और सत शूद्र का डिवीजन किया, जो कि वेद में नहीं है। सत शूद्र वर इक्विवेलेंट टू क्षत्रिय, ब्राह्मणों ने वहां के जो आप लिटरेचर अगर, और इवन आप उससे पहले सातवाहना लिटरेचर में देखिए, सातवाहना का जो पीरियड था उस तक में इस डिवीजन का आपको वो स्पीड पर एम्ब्रियोनिक वो मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इसलिए क्लास, कई लोगों ने कम्युनिस्ट मूवमेंट बोला क्लास इज इक्वल टू कास्ट, कास्ट ही भारत की क्लास है, कई लोगों ने बोला कि क्लास कास्ट है, कई लोगों ने बोला कास्ट क्लास है, ये दोनों एक अलग चीज है। इसको आप क्या बोल रहे हैं उसका सीरियल चेंज करते थे मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन उसके एलाबोरेशन में भी जाना यूजलेस है, एकदम गलत बात है। इसके बीच में करेस्पॉन्डेंस रिलेशन, इक्वल टू का रिलेशन नहीं है, करेस्पॉन्ड कर। कास्ट हायरार्की किसी भी सोसाइटी की ऐसी नहीं हो सकती जो कि क्लास हायरार्की को निगेट करती हो, लेकिन वो उसका इक्वल टू हो ये भी जरूरी नहीं, और ये हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट कास्ट आइडियोलॉजी अगर क्लास ऑपरेशन को एकदम सीधे सीधे दिखाने लगेगी तो इट वॉन्ट रिमेन हेजेमोनिक, उसको अगर हेजेमोनिक बने रहना है, उसको आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर का काम करना है कास्ट आइडियोलॉजी को, तो उसको क्लास डोमिनेशन जो कि दिख रहा है उससे ओवरलैपिंग वो कभी नहीं करे, वो उसको मीडिएटेड फॉर्म में पेश करे। जो आइडियोलॉजी का फंक्शन होता है रियलिटी का मीडिएटेड व्यू पेश करता है वो, है ना। तो अब कास्ट आइडियोलॉजी जो है वो कास्ट हायरार्की या कास्ट सिस्टम या कास्ट और क्लास के बीच का रिलेशन इक्वल टू का नहीं, और न ये सुपर स्ट्रक्चर की फिनोमेनन है। कास्ट आज भी वन ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है, रिसोर्सेज में कितना किसका शेयरिंग होगा इसमें कास्ट का तो ये इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, ये इकोनॉमिक रिलेशन ही तो हुआ। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं कास्ट एक रेगुलेटर का काम कर रहा है, दूसरे कास्ट का तो ओरिजिनल ओरिजिन ही लेबर डिवीजन है, तो वो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट कैसे हो गया था। तो यहाँ अंबेडकर भी गलत थे और क्लासिकल कम्युनिस्ट ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट जो हिंदुस्तान का था वो भी गलत था। इसलिए कास्ट की हिस्टोरियोग्राफी पे तो भी मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ कास्ट को समझना अगर आप समझते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम जो हिंदुस्तान में आया उसने अपने तरीके से कास्ट सिस्टम को अडेप्ट किया। इवन इस्लाम ने इस्लामिक इन्वेजन के बाद टर्किश इन्वेजन जो हुआ 11th सेंचुरी में, टर्किश इन्वेजन से लेकर डिक्लाइन ऑफ मुगल रेजिम उस तक पूरे दौर में सिर्फ एक इस्लामिक ऑब्जर्वर था जिसने कास्ट का क्रिटिक किया है, एल्बरूनी जो कि एक साइंटिस्ट और ट्रेवलर था। इसके अलावा मैं आपको वो रेफरेंस दे सकता हूँ जिसने हर जो नया रूलर आया चाहे वो इस्लामिक था चाहे वो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे, उन्होंने कास्ट को ईर्ष्या की निगाह से देखा कि कास्ट हमारे पास भी इतना ही हेजेमोनिक और इतना ही जबरदस्त पावरफुल ऑपरेटिव आइडियोलॉजिकल एपरेटस होता तो मजा आया था। और इसलिए इस्लामिक ऑब्जर्वर ने कहा कि ये इट्स अ वेरी यूजफुल सिस्टम। और उसको पूरे आप देखिए जब कंपोजिट रूलिंग क्लास बना और राजपूत किंगडम जो है ट्रिब्यूटरी बन गए मुगल के और उनको जमींदार का स्टेटस दिया गया, तो मुगल सिस्टम और टर्किश इन्वेजन के दौरान में उन्होंने उसी गांव के उसी रिलेशन का इस्तेमाल किया सरप्लस एप्रोप्रिएशन के, खेती से सरप्लस एप्रोप्रिएट करने के इस्लामिक जो रूलर थे उन्होंने भी उसी रिलेशन का कास्ट हायरार्की का इस्तेमाल किया। और ब्रिटिशर्स से बात करते हैं, ब्रिटिशर्स ने जमींदारी एबोलिशन सॉरी जमींदारी एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया। कुछ हिस्टोरियन तो यहाँ तक कहते हैं कि कास्ट इज अ कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट, एक सबाल्टर्न हिस्टोरियन निकोलस डग, उसकी एक बहुत फेमस किताब है कास्ट ऑफ माइंड, पढ़ने लायक किताब है। ये फिजिक्स गलत है क्योंकि ये ब्रिटिशर्स से पहले के भारत को स्वर्ग बता देगा ना, अगर आप बोलेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कास्ट पैदा किया तो मतलब उससे पहले का ठीक था, इसलिए खतरनाक वो है। लेकिन एक मायने में कॉलोनियल स्टेट ने कास्ट को मजबूत बनाया दो तरीके, पहला लैंड सेटलमेंट, जमींदारी सेटलमेंट, महालवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, तीन सेटलमेंट लागू किए अंग्रेजों ने अलग अलग टाइम पे। पहला था जमींदारी सेटलमेंट जिसने पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया कि सवर्ण जमींदार वो जमीन के मालिक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड ब्रिटिशर्स लाए और उन्होंने पहली बार ये रिकॉग्निशन दिया कि सवर्ण लैंडलॉर्ड ही लीगल जस्टिफाइड लेजिटिमेट ओनर ऑफ लैंड है। और 30 साल के लिए रेवेन्यू फिक्स करने का मतलब क्या हुआ, कौन तबाह होगा उसमें, मतलब एक ऐसे टाइम में जब फसलें बर्बाद होती है, कैनाल का कोई नेटवर्क नहीं है, मौसमी बदलाव की वजह से फसलों का उतार चढ़ाव जारी रहता है, तो जिस साल बहुत अच्छी हुई उस साल तो प्रेजेंट को प्रॉफिट होगा, लेकिन फिक्स रेंट होगा 30 साल के लिए, तो सबसे पहले बर्बाद होने वाला प्रेजेंट कौन होगा, शूद्र और दलित। तो ये जो लैंडलेसनेस बनी दलित स्थिति, इसको पेरेनियल बनाने का काम किसने किया, आपको मिडिल एजेस तक या मध्य काल तक आपको इंटरनल डायनामिज्म कास्ट सिस्टम में जितना दिखता है, ब्रिटिशर्स आते ही वो एकदम जैसे फ्रीज करते हैं सारी कैटेगरीज लैंड सेटलमेंट के जरिए भी, और दूसरा जो होता वो था राइज ऑफ एथनोग्राफिक स्टेट, द फेटिश टू काउंट बॉडी काउंट एंड कैटेगराइज। इसलिए पहला सेंसस होता है H.H. Risley, सेंसस कमिश्नर था 1881 में, और पहली बार शेड्यूल कास्ट या डिप्रेस क्लासेस टर्म उसमें आता है, दलित को डिफाइन किया जाता फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इतना क्लियर कट डेफिनेशन ब्राह्मिनिकल ऑर्थोडॉक्सी ने नहीं दिया था जितना क्लियर कट डेफिनेशन कॉलोनियल स्टेट ने दिया। तो इसलिए ये जो, और इसको बहुत अच्छा काम है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है यूएस का अर्जुन अप्पादुरई, या रोनाल्ड इंडन का इमेजिनिंग इंडिया एक किताब है, मतलब आप उसका क्रिटिक और चीज पे कर सकते हो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन एक बात है कि अंग्रेजों ने कास्ट सिस्टम को कमजोर नहीं बनाया बल्कि मजबूत बनाने का काम किया और उसको ऑसिफाई करने का काम किया। और इस तौर पे अंबेडकर का ये व्यू कि दलित ने भारत को कॉन्कर करने में ब्रिटिशर्स की मदद की, ये अंग्रेज भी जानते थे ऐसा नहीं था, दलित को ब्रिटिश रॉयल इंडियन आर्मी में आमतौर से सारे नीचे के काम मिलते थे, एंड इट वॉज वन ऑफ द रीजन फॉर कास्ट डायनेमिक ड्यूरिंग 1857 का जो म्यूटनी कम पेजेंट रिवोल्ट था उसमें इंटरनल कास्ट डायनेमिक जो बैरक्स में काम कर रही थी उसका एक बहुत बड़ा प्रिंसिप्स ये नहीं था कि वो सुअर की चर्बी वाला वो डांस से सीखना पड़ेगा, उसमें कास्ट डायनेमिक भी था जो कि 6 वॉल्यूम तक अगर आप सबाल्टर्न स्टडीज के पहले 6 वॉल्यूम पढ़े लगभग हर में एक है, चंद्रा जेट एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था उस समय कि किस तरीके से कास्ट डायनेमिक काम कर रहा था अलग अलग प्रेजेंट मूवमेंट्स में, म्यूटनीज में और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स में। तो ऐसा नहीं था। और अम्बेडकर इस बात को जानते थे, वो तो ब्रिटिशर्स की तरफ एक ऑलिव ब्रांच बना रहे थे, क्योंकि उनका कोलैबोरेटिंग विद द रूलर्स का जो स्ट्रेटजी था उनको अमल में लाना, क्योंकि यही अम्बेडकर थे जिन्होंने ये कहा था कि भारत को तबाह करने का काम ब्रिटिशर्स ने किया। लेकिन 30 के बाद वो कहते हैं कि दलित अनटचेबल एंड ब्रिटिशर्स आर लिंक्ड, वो गहरे अदृश्य बंधनों से बंधे हुए, और जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो दलित को भारत को कॉन्कर करने में ब्रिटिशर्स की मदद की। और उन्होंने कहा कि कॉलोनियल स्टेट और ब्राह्मणिज्म दो एनिमीज हैं, कॉलोनियल कैपिटलिज्म और कॉलोनियल स्टेट और ब्राह्मणिज्म दो एनिमी हैं, और आप एक साथ दो एनिमी से नहीं लड़ सकते। ये बड़ी गलती थी, दो एनिमी नहीं थी, एक एनिमी। इसलिए जब ब्रिटिशर्स आए तो 1784 में विलियम जोन्स ने ओरिएंटल सोसाइटी, यहाँ मेरे पास मेरे ख्याल से एक ब्रांच का ऑफिस यहाँ है पास में कहीं, ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और उसमें तमाम मौलवियों और तमाम पंडितों और ब्राह्मणों को इंडियन स्क्रिप्चर्स और कोड्स और संहिताओं और वेदों के ट्रांसलेशन का काम दिया इंग्लिश सिखा के, क्योंकि उनका बेसिक जो वो था कि टू रूल इंडिया बेटर यू हैव टू नो इंडिया बेटर, एंड द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, हु इज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, नॉट दलित, नॉट शूद्र, दे वर द ब्राह्मण, एंड द इंटायर कॉलोनियल नॉलेज सिस्टम वॉज बिल्ट अपॉन दिस। ब्राह्मण के साथ कोलैबोरेशन करते कॉलोनियल स्टेट ने, और यहाँ के फ्यूडल स्ट्रक्चर और कास्ट हायरार्की को छेड़ा ही बिल्कुल, क्योंकि फ्यूडल पीरियड तक कास्ट ग्रुप्स और क्लास, कास्ट और क्लास एक कभी नहीं था, लेकिन कास्ट ग्रुप्स अगर आप कोई स्पेक्ट्रम बनाए सोसाइटी का, तो कास्ट ग्रुप और क्लास ग्रुप एक दूसरे को लगभग लगभग ओवरलैप करते थे। ये टूटा है खासतौर से आजादी के बाद, लगभग सारे लैंडलेस सीजन जो थे ब्रिटिश रूल के जाने के पहले, लगभग 90% वो या तो शूद्र थे या दलित। मध्य जातियों में किसान थे लेकिन वो थे मैक्सिमम दलित और शूद्र थे। ये ज्यादा बदला है आजादी के बाद, जमींदारी एबोलिशन एक्ट 1948, लैंड सीलिंग एक्ट, और उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, ये जो मिडिल कास्ट का उभार हुआ है, मिडिल पेजेंट कास्ट का अवसर हुआ है, और पेजेंट पॉलिटिक्स चरण सिंह की जो थी उसी का एक्सप्रेशन था। चरण सिंह की जो पूरी पेजेंट पॉलिटिक्स थी वो क्लास पॉलिटिक्स उसी का एक एक्सप्रेशन था। तो ये भी एनालिसिस कहीं ना कहीं सही नहीं थी, और इसलिए अगर आप कास्ट के सिस्टम को, कास्ट सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर के फिनोमेनन नहीं है जिसको आप कुछ सुधार करके या एजुकेशन सिस्टम में चेंज करके बदल देंगे, हर एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम जो बदला, भारत के एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम चेंज हुआ, प्री फ्यूडल प्रोडक्शन था, फ्यूडल प्रोडक्शन आया, कॉलोनियल स्टेट ने खास किस्म का लिमिटेड कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट अलॉन्ग विद प्रिजर्वेशन ऑफ फ्यूडल एग्रेरियन सिस्टम, उस किस्म का एक डेवलपमेंट किया, और आजादी के बाद हिंदुस्तान में एक खास किस्म का पब्लिक सेक्टर कैपिटलिज्म, इम्पोज सब्स्टिट्यूशन के रास्ते कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का रास्ता अख्तियार किया गया, जो कि अब न्यू लिबरल पॉलिसीज के दौर में प्रवेश कर चुका है। इस सारे एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम ने क्या कास्ट सिस्टम को अपनी तरीके से अडेप्ट नहीं किया? इन सब ने कास्ट सिस्टम को अपनी तरीके से मोल्ड और रिमोल्ड किया, और ये चीज को बताता है कि कोई भी एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम चाहे कितना भी रिफॉर्म कर ले, चाहे उसमें आप कितनी सोशल लीगल एडवोकेसी कर ले, कास्ट सिस्टम को एनिलेट नहीं कर सकता। कास्ट सिस्टम एनिलेट तभी हो सकता है जब एक ओवरऑल रेवोल्यूशनरी चेंज का प्रोजेक्ट हम लोग हाथ में लें, और इस बात को समझें जो ब्रेक्ट ने कहा था, स्मॉल चेंजेस आर एनिमीज ऑफ बिग चेंजेस, छोटे बदलाव अक्सर बड़े बदलाव के दुश्मन होते हैं। और इसलिए हम लोग जब तक कोई ओवरऑल रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट को नहीं लेते हैं, उस पर बहस करने के लिए बहुत वक्त होगा हमारे पास आने वाले भविष्य में, और भी हम, मैं कहूंगा पोलेमिक के साथियों से किस तरह के डिबेट डिस्कशन रखें, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन एक रेवोल्यूशनरी चेंज के प्रोजेक्ट का एक पार्ट बनकर और उसका एक इनहेरेंट ऑर्गेनिक पार्ट बनकर कास्ट के एनिलेशन की हिस्टोरिकल परियोजना वो अपने मकाम तक पहुंच सकती है, और ये कहना कि जब रेवोल्यूशनरी चेंज हो जाएगा तब कास्ट खत्म हो जाएगी, ये निहायत बेवकूफी की बात है। बल्कि ये कहना चाहिए कि एंटी कास्ट मिलिटेंट मूवमेंट, वो नहीं जो आइडेंटिटेरियन दलित पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, या फिर जो इलेक्टोरल पॉलिटिकल दलित ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि जो प्रैग्मेटिक दलित पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो नहीं, एंटी कास्ट मिलिटेंट मूवमेंट जो कि वर्किंग क्लास के सभी हिस्सों को अपने साथ ले और कास्ट के खिलाफ लड़ाई के काम को, मैदान को, पर अपना क्लेम न छोड़े, क्लास पॉलिटिक्स का, क्लास पॉलिटिक्स का क्लेम उससे मजबूती के साथ एस्टैब्लिश करे। लड़ेगा कौन? जो सबसे ज्यादा ऑप्रेस्ड है, वो अंबेडकर ने कहा था ऑपरेशन ब्रीड्स रेजिस्टेंस। तो कास्ट के मामले में ये बात सही क्यों नहीं साबित होती? जहाँ ऑपरेशन सबसे ज्यादा होगा वही लोग लड़ेंगे, जो लुट रहे हैं वो लड़ेंगे, जो तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जिनके बच्चों को जलाया जा रहा है, जिनके हाथ काटे जा रहे हैं वो लड़ेंगे। और उनको ऑर्गेनाइज किए बिना कोई एंटी कास्ट दलित मूवमेंट नहीं खड़ा हो सकता। दलित मूवमेंट नहीं बोलेंगे, एंटी कास्ट मूवमेंट, एक रेवोल्यूशनरी मिलिट्री एंटी कास्ट मूवमेंट जो सड़कों पर इन फासिस्ट गुंडों को जवाब देना चाहता है। जब तक ऐसा मूवमेंट नहीं खड़ा होगा तब तक आप कोई रेवोल्यूशनरी यूनिटी क्लास की भी नहीं बना पाएंगे, तब तक आप सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ ये भी सच है कि सोशलिस्ट प्रोजेक्ट के अमल में आते ही कास्ट तुरंत खत्म नहीं होगा, कास्ट को खत्म होने में वक्त लगेगा, बहुत सारे कल्चरल रेवोल्यूशन करने पड़ेंगे, बहुत सारे एजुकेशनल रेवोल्यूशन करने पड़ेंगे, एक जनरेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को, नए सिस्टम को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, नई पीढ़ी को नए तरीके से नरिश करना पड़ेगा, ह्यूमनिस्ट डेमोक्रेटिक इक्वालिटी के बैठे